نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہماری سمجھ میں، ہماری بوجھ میں، ہمارے شعور میں برکت دے اور ہم سے بہترین طریقے سے اس پارے کا حق ادا کروائے اور ہم اس کو ویسے ہی سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد کہ کہیں اس میں خواہشات کا رنگ نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خواہشوں سے اوپر اٹھ کر اس کلام کو سیکھنے والا بنائے. شروع کرتے ہیں دور قرآن 2020 آج اس میں سے ہم پارہ نمبر 19 کریں گے 19 وقال الذین. دوسرے پاروں کی طرح یہ پارہ بھی پہلا ہی لفظ جو اس میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے ہے وہی اس پارے کا نام ہے. یہ بھی یاد دہانی کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے. حافظ جب حفظ کرتے ہیں تو اکثر غلطی لگتی ہے، تو اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سامنے رہتی ہیں تو پھر آیتیں یاد آ جاتی ہیں. یہ پارہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے پچھلے پاروں کی طرح. کیوں نہ ہو خوبصورت، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کسی کو نہ شک ہو سکتا ہے نہ شبہ ہو سکتا ہے. اور ہم اسی کی تعریفیں کرتے ہوئے اور اسی کے نبی پر درود بھیجتے ہوئے ہم اس کلام کو اسی کی مرضی اور مراد کے مطابق سمجھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے، ہماری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ دوسرے اس بات کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے کو آسانیوں والا فرما. دور حاضر کے فتنے اور ان کے حل یعنی ٹرائلز اینڈ سلیوشنز، اس کے سلسلے میں آج اس بارے میں ہم جس فتنے کو دیکھیں گے وہ میری نظر میں سارے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ ہے ترک قرآن کا فتنہ. شاید آپ کے لیے یہ ٹرم اتنی فیمیلیئر نہ ہو کہ ترک قرآن کیا ہے اور کس نے قرآن چھوڑا اور کس نے کیا، تو ابھی اس سوچ کو اپنے لیے تھوڑا سا رکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالی اس پارے کو پڑھنے کے بعد اور خاص طور پہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ آج ہمارا بہت بڑا فتنہ، ہمارے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ ہے وہ دروازہ جس سے پھر بہت ساری کباختیں ہم میں آتی ہیں. ایک سوال خود سے کرتے ہیں، میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کیجئے، کیا مجھے قرآن پاک بغیر ترجمے کو دیکھے سمجھ آتا ہے؟ دن رات الحمدللہ تلاوتیں بھی ہوتی ہیں، تراویوں میں قرآن پاک بھی سیکھا جاتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں اس کتاب کو اس معنی میں لیتی ہوں؟ آپ دیکھیے کہ ایمرجنسیز میں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اور اسی میں سے آج میری نظر میں ایک ایمرجنسی بیسس پہ کام کیا ہے کہ ہم امت کو، آف کورس انسانیت تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ہم مسلمان جو اس قرآن سے تعلق رکھتے ہیں انہیں کو اس کتاب سے جوڑیں. چھوٹی سی مثال دوں گی، کوئی آپ کو انسٹرکشن دے اور آپ کو اس کی زبان نہ آتی ہو. مثلاً باہر کے ملکوں میں آنے کے بعد مجبوراً کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، انگلش نہیں آتی تو کیا کریں؟ اب باس نے انسٹرکشنز دی، تھنگس ٹو ڈو، جو پیپر آیا وہ انگلش میں تھا، کیا فرسٹریشن نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. جہاز میں بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو کسی جگہ روک کر انگلش میں کچھ کہتے ہیں، ادھر جائیے، ادھر سے پیپر لیجیے، ادھر سے لیجیے، کیا آپ کو فرسٹریشن ہوگی؟ ہوگی. شرمندگی ہوگی؟ ہوگی. اس کی اس بات پہ پوری طرح عمل کر سکیں گے؟ ہو سکتا ہے اس نے آئی ڈی کارڈ مانگا اور آپ گھبراہٹ میں اس کو پاسپورٹ پکڑائیں، بعد میں شرمندگی کا احساس ہوگا نا. بس لکھ لیجئے، آج کے دور کی ایمرجنسی یہی ہے کہ جب دن میں 3 نمازوں میں ظاہری طور پہ یعنی فجر، مغرب اور عشاء، ہم سب سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کا ایک مخصوص حصہ پڑھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نام ہے. اور آپ میں سے جو لوگ پیغام قرآن سیریز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم ہر پارے کی چھوٹی چھوٹی آیات کو لینے کے بعد پھر چیدہ چیدہ آیات میں سے ہدایات لیتے ہیں. تو جب ہم قرآن پاک کا کچھ حصہ نماز میں جو پڑھتے ہیں ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتا، تو اس سے پھر ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، نمازیں پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، और गूंगी बहरी नमाज़ें ना तो बुराई से रोकती हैं ना बेहयाई से, और ना उसके वो असरात हमारे दिलों पे मुरतब होते हैं जो हम पीछे सूरह तौहा में भी पढ़ चुके और आगे 21वें पारे की पहली आयात में भी पढ़ेंगे। तो लिहाजा आज के दौर में एक बहुत बड़ा मसला जो उम्मत मुस्लिमा को पेश है वो है, बग़ैर किसी तर्जमे के हमें कुरान पाक समझ नहीं आता। माजरत के साथ बहुत सारे हुफ्फाज़ को भी कुरान समझ नहीं आता पूरा सीने में कुरान डालने के बावजूद, और इससे भी बड़ी माजरत के बहुत सारे लोग जो दीन की खिदमत भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह कर रहे हैं, सही सोच अकीदे को फैला रहे हैं, फिक्र उन्होंने कुरान सुन्नत की रोशनी में पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, अकीदा उनका ठीक है, लेकिन जब आप उनके सामने अरबी मुसहफ रख दें तो वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते इल्ला माशाल्लाह। तो ये है आज के दौर में करने का काम, वरना क्या होगा, अल्लाह ना करे कि मेरे आपके ऊपर भी इसकी ज़द पड़े। सूरत फुरकान आयत नंबर 30 जो इस पारे की मेन थीम आयत है उसको ले लीजिए। क़्यामत का दिन होगा, लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठे होंगे, लेकिन शिकायत लग जाएगी। कैसे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, और रसूल कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था, पकड़ कर छोड़ा था, क्योंकि देखिए दो लफ्ज़ है इत्तख़ज़ू और महजूरा, दोनों अपोजिट है, अखज़ा कहते हैं पकड़ने को और हजरा कहते हैं छोड़ने को, तो फिर इसको अगर हम एक सेंस में कर लें कि मेरी ये वो कौम है जिन्होंने कुरान को पकड़ कर भी छोड़ा हुआ था, ये है वो शिकायत जो क़्यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जब लोग सुनेंगे तो उनके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे इस कुरान से हिजरत की थी। ये क्या है जहाँ तरतीब में आयत आती है, तो हम इस पर इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपके मेरे लिए एक दुआ मांगने की ज़रूरत है जो इस पारे के थीम के साथ है। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, और जो कुरान की मोहब्बत है वो तो है ही, लेकिन इस दुआ की आपको एक तासीर बता दूँ कि मुफस्सरीन और उलमाए कराम कहते हैं कि कभी इंसान को ऐसे लगे कि हालात रुक गए हैं, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे दोराहों पे इंसान आ जाता है कि समझ नहीं आती जाऊँ किधर, जो दरवाज़ा खटखटाएं वो बंद मिलता है, वापसी का रास्ता नहीं। तो रंजो गम को दूर करने की दुआ में अल्लाहुम्मा इन्नी अबदु कई बिनु अबदी कई बिनु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फिय हुक्मुक अदलुन फिय कदाउक अस्सलुक बिकुल इस्मिन हुवा लक समईत बिही नफ्सक अवल्लमतहु अहदम मिन खल्किक أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني وذهاب همي। ए अल्लाह बेशक मैं तेरा बंदा और तेरे बंदे का बेटा और तेरी बंदी का बेटा हूँ, हम ख़वातीन अपने लिए फ़ीमेल के सीगे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अल्लाह मैं तेरी बंदी तेरे बंदे की बेटी और तेरी बंदी की बेटी हूँ, मेरी पेशानी तेरे काबू में है यानी मेरी तकदीर तेरे हाथ में है, और मेरा सर तेरे ही आगे झुकता है, और मेरे दिमाग में आने वाली सोचें भी तेरे ही काबू में है, मेरे हक़ में तेरा हुक्म जारी है यानी मेरे साथ आज तक ज़िंदगी में जो हुआ तेरे हुक्म से हुआ, तेरा फ़ैसला मेरे बारे में इंसाफ़ पर मबनी है यानी आज तक अगर मुझे कोई तकलीफ़ पहुँची बीमारी पहुँची दुख पहुँचा तो ये सरासर तेरा इंसाफ़ था यानी तूने मेरे पे कोई जुल्म नहीं किया। मैं सवाल करता हूँ तेरे हर उस नाम के साथ जो तूने अपने लिए रखा, वो कितने हैं मैं आप नहीं जानते, या तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया ये भी हम नहीं जानते, अल्लाह की मखलूक चिड़ियाँ तोते चिंटियाँ किस ज़ुबान में अल्लाह की तारीफ़ें करती हैं, या तूने अपनी किताब में उतारा, हाँ इसको हम जानते हैं। कुरान पाक में जितने नाम आए अल्लाह ताला के उन सब के वास्ते और वसीले के साथ हम पुकारे हैं, या तूने इसे अपने पास इल्मे गैब में रखने को तरजीह दी ये भी हम नहीं जानते। ज़रा नोट तो करिए तमहीद क्या बन रही है। देखिए ऑलमोस्ट दुआ की 3 लाइनें पूरी हो गई, अभी तक सिर्फ अल्लाह के साथ अपनी आजजी और अल्लाह ताला की बड़ाई है, ये वही अंदाज़ है जो या का नाबुदू व या का नस्ताहीन में है। अब दिल बेचैन है कि मांगने वाला मांगेगा क्या अल्लाह के साथ इतनी प्यारी बातें करके, तो अन तजलिल कुरान अलअज़ीम रबी कल्बी, ये है मांगने वाली चीज़ कि तू कुरान को मेरे दिल की बहार और सीने का नूर और मेरे गम को दूर करने वाला और मेरी फ़िक्र को ले जाने वाला बना। तो यह है कुरान मेरे दिल की बहार, قرآن میرے سینے کا نور اور قرآن میرے غموں کو دور کرنے والا اور میری فکروں کو لے جانے والا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا ہم یہاں کیوں مانگیں اس موضوع کے اعتبار سے. تو لکھ لیجئے کہ قرآن ان ساری خوبیوں سے متصف تو ہے ہمارے لیے, دل کی بہار, سینے کا نور, غموں کو دور کرنے والا اور فکروں کو لے جانے والا تب بنے گا جب یہ ہمیں سمجھ آئے گا. آپ امیجن کیجئے کہ قرآن پاک آپ کی دوست ہے یا آپ کا دوست ہے. اب آپ اس سے دل کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کو کچھ باتیں کہتا ہے اور آپ کو اس کی زبان نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا کہ میرا دوست ترکی ہے اور ترکی زبان مجھے آتی نہیں, کیا آج ہمارا قرآن کے ساتھ یہ تعلق تو نہیں. آپ دکھی دل کے ساتھ بیٹھے ہیں, کسی نے آپ کا دل دکھا دیا, بس آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کچھ جھگڑا کر کے گھر سے چلے گئے. آپ پریشان ہیں, کس کو بتاؤں, امی کو بلاؤں, ابو کو بتاؤں. اتنے میں آپ قرآن کھولتے ہیں اور آپ کے سامنے سورت یوسف آتی ہے اور قصہ یوسف پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, چلو شکر ہے میرے بھائی نے مجھے کنویں میں تو نہیں ڈالا. یہ ہے غموں کو دور کرنے والا. آپ کو کوئی فکر لاحق ہوئی بھی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کل کیا بنے گا, کیسے کیا میں اپنی زندگی میں, کوئی اندیشے ہیں, ایسی بات ہے, فوراً آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت کھلتی ہے, الَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ کہتے ہیں اچھا میں تو اللہ کی دوست بننا چاہتی ہوں, ولایت کے درجے پہ جانا چاہتی ہوں, ان کو غم نہیں ہوتے, چھوڑو میں بھی غم نہیں کرتی. ادھر آپ کی خوشیوں میں کہیں ذرا سی کہہ لیے کہ پھرکی گھومی. آپ کسی ایسی خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے کے پلانز بنا رہے تھے, اتنے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یاد آ گیا. یعنی کہہ لیجئے کہ اصل میں پھر فی ہی ذکرکم والی بات سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے. آپ صرف ادھر سے ادھر کھول کھول کے قرآن پڑھتے ہیں, فالے تو آپ نہیں نکالتے, لیکن قرآن بند کرنے کے بعد آپ کو کیا لگے گا. اپنی کسی دوست سے فون کال ملائی تھی اور تھوڑے سے اس سے دکھ سکھ کیے ہیں, تو اس کے لیے پھر زبان آنی لازمی ہے. ہمارے کچھ ساتھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے جبکہ ایک سے ایک اچھا قرآن مارکیٹ میں موجود ہے, اردو ترجمے, انگلش ترجمے, ہندی ترجمے, بنگالی ترجمے. تو پھر بات وہی ہے کہ کانورسیشنز میں ڈکشنری نہیں چلتی. آپ ایک بک تو پڑھ سکتے ہیں ڈکشنری کی روشنی میں, ایک پیج اس کا لیجئے, ڈکشنری میں کھولیے, دو چار لفظوں کو کر لیں, لیکن اب میں اس وقت بات کر رہی ہوں اردو میں. کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی بغیر اردو جاننے والا اس وقت آرام سے بیٹھ کے سن سکتا ہے؟ آپ کو ایک ڈکشنری دے دی جائے جس میں آپ اردو سے انگلش یا اردو سے ہندی کھول لیجئے کہ جائیے اس کی مدد میں آپ اس لیکچر کو سنیے, تو وہ نہیں کر پائے گا. تو قرآن ایک ڈائیلاگ ہے, بل ہوا کلام اللہ, اور کلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کو فی البدی سمجھا جائے, کیونکہ آپ نے فوری سے فوری جواب دینا, یہ واہبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ چکی ہو اور ہم اس سے بہترین طریقے سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہوں. جتنا زیادہ اس کے اوپر نظریں آتی جائیں گی, نظریں لگتی جائیں گی, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سینہ اس کتاب کے لیے کھول دے گا. آج کی حدیث بھی اسی موضوع کی ہے, صحیح مسلم 1934, ان اللہ یرفع بحاز الکتاب اقواما ویدع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کے ذریعے کچھ گروہوں کو, مراد یہ کہ وہ لوگ جس کا حق ادا کریں گے, بلند و سرفراز کرے گا, اور کچھ دوسرے گروہوں کو یعنی جس کی حق تلفی کریں گے پستی میں جھونک دے گا. اللہ اکبر, یہ وہی بات ہے کہ جس کو شاعر نے کہا تھا ایک شعر کی صورت میں. لیکن ایک اور حدیث سن لیجئے, 4604 ابو داؤد, مقدام سے یہ ایک روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز بھی یعنی سنت. قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے کہے, اس قرآن کو لازم پکڑو, جو کچھ اس میں حلال پاؤ اسی کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو. مراد یہ کہ حدیث کو نکال دو, یہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک اور روایت لے لیجئے, کیونکہ موضوع قرآن ہے تو قرآن پاک سمجھ ہی احادیث کی روشنی میں آتا ہے. موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے, جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی سوچا ہے کہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کون والی وارث ہوگا؟ ہم تو عموماً یہ سوچتے ہیں ہمارے بعد ہمارے بچوں کا وارث کون ہوگا, لیکن دیکھیے جن کو امت کا درد لگا ہوتا ہے وہ امت کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل, سوال تو واقعی بہت اہم ہے, آپ ہی بتا دیجئے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے. انہوں نے فرمایا, اللہ کی کتاب, اس میں تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں اور تم سے بعد کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی یہی ہے, یہی صراط مستقیم ہے, یہ پر حکمت بیان ہے اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. آج ہم اسی کو تھامنے لگے ورنہ کیا کہا کسی نے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریکِ قرآن ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ میں تاریکِ قرآن نہ بنائے بلکہ اس قرآن کو پکڑنے والا بنا دے۔ سورت فرقان کی آئی 21 سے آنورڈ اس سورت میں کہاں کہاں اس فتنے کی بات ہوگی جو آج لے کر آئے ہیں، ذرا سا دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آئی 30، قرآن کو ترک کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ۔ آئی 32، کفار کا قرآن پر متعصب سے بھرا ہوا یعنی تعصبانہ اعتراض۔ اور آیت 52، جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، قرآن پاک کے ساتھ جہاد کیسے کیا جاتا ہے۔ اور پھر 73، مومنین کا قرآن سننے پر رد عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ جمے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب آیتوں کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہائی لائٹس آف دی پارا، چند جھلکیاں جس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی ہم جو پڑھنے بیٹھے ہیں ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ نہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا، اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ایک بار پھر نیت کی جائے گی۔ رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام وقت کے حکمرانوں کے سامنے بھی پیش کرنا ہے، جیسے اس بارے میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ رب سے خطاؤں کی معافی کی تمہ رکھنی ہے جو ابراہیم کی دعاؤں میں سے ہمیں ملے گی۔ اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجات دینا ہے، جو ہر دور میں ہی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور جب یہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر رب کی طرف دعوت دینا زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور پھر اس پہ اجر کی توقع بھی اللہ سے ہی ہوتی ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، یعنی دائیہ دین کیسے دولت سے، مال سے، تنخواہ سے، پے سے، جو نام لے لیجئے اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ 100 اور 1 اس کے لیے ایک برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی نظر مال پہ نہیں، نیکیوں پہ ہوتی ہے۔ اور جس نے اپنی تمنا اور خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو محدود کر لیا، اس کی ڈوری کو کاٹ دیا، اس کے لیے 0 کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے امانت دار کیسے بننا ہے، ایمان والوں کے لیے اپنے بازو کیسے جھکانے ہیں، یعنی عاجز بن کر کیسے دین لینا دینا ہے، اور اسی طرح برائی کو بھلائی سے بدلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگ آپ کے ساتھ برا معاملہ کریں اور آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ کتنا مشکل ٹارگیٹ ہے جو ہم اس بارے میں سے سیکھنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، فرما برداروں میں سے ہونا، اور اصلاح کا کام کرنا، اور یہ سب کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے یہ سب کچھ آسان کرے۔ آئیے شروع کریں گے سورت فرقان، جو ترتیب کے اعتبار سے 25 نمبر کی سورت ہے، اور ٹوٹل اس کی آیتیں 77 ہیں۔ 77، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ مشرقین کی تصدیق نبوت کے لیے احمقانہ شرائط سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، جب بندے کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ ہدایت کی دعوت جب ان کو ملے تو اس پر کیا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، آپ یہاں دیکھیں گے۔ اور ایسے لوگ اکثر پھر ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں، یعنی نخرے کرنے والے اور ایک بال کی کھال نکالنے والے عموماً ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کا نبی موجود تھا مکہ میں، اپنی زبان اتھر سے دعوت دیتا تھا، لیکن چونکہ مکہ والوں کے دل میں تکبر تھا، بڑائی تھی، خود کو بڑا سمجھنے کا احساس تھا، تو کچھ لوگوں نے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ وقال الذین کہہ کر، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے خوشی کی بات نہ ہوگی، اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ، اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرح بھڑک کر انہیں پرگندہ ذروں کی طرح کر دیا، یعنی کفر کے ساتھ کی نیکیاں ہوا منصورہ۔ عیش بنا دے گا اللہ قیامت کے دن وہ ساری سوشل ورک کے کاموں کو اور ہیومن رائٹس کے نام پہ کیے ہوئے کاموں کو، جنہوں نے اللہ کو اس کا رائٹ نہ دیا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہاں کدھر جاؤ گے، البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خواب کا بھی عمدہ ہوگی، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اور اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بری دوستیوں پہ اس دن ریگریٹ ہوگا، کیونکہ برے دوست برائی کی رغبت دلاتے ہیں، ترغیبات دلاتے ہیں، جبکہ نیک دوست نیکی کی رغبتیں دلاتے ہیں۔ ہم خود سے سوال کریں، ہماری دوستی کس سے ہے؟ آئیے قرآن پاک سے اپنی دوستی کا رشتہ مضبوط کر لیں، ایک ایک کر کے ہماری دوستیوں کے معیار بھی بدلتے جائیں گے۔ جتنا قرآن سے دوستی ہوگی اتنا اچھے لوگ آپ کے دوست بنیں گے، جتنی قرآن سے دوری ہوگی اتنا اچھے لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے، یہ معیار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اور قرآن سے دوستی، کیا اس کی بنیادیں ہیں؟ ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ ہے۔ جس درد کو آج اس پارے کے اندر ہم نے محسوس کرنا ہے وہ کیا ہے کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، قرآن پڑھنے والوں میں بھی طلب نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے، ہماری جڑوں میں ماں باپ نے جو اللہ رسول کی اور قرآن کی محبت دی ہوئی نا، کہ ہم سپورٹ کر ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں ہر سال رمضان میں، چلے ایک ایک پارہ کر کے ایک قرآن تو پورا کر لیں، یہ بڑی بات ہے۔ اس کا کریڈٹ ہمارے بزرگوں کو جاتا ہے، ہمارے فور فادرز اور انسیسٹرز اور دادا دادیوں کو جاتا ہے، جو صبح کہتے تھے اٹھو قرآن پڑھو، سوتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں آج بھی۔ آج بھی امت میں الحمدللہ یہ رواج اور سنت موجود ہے کہ ان قرآن الفجر کا نہ مشہودہ، پر سمجھ نہیں آتا، یہ غلطی ہو گئی۔ ہمیں ناظرہ پڑھایا گیا، ہماری بسم اللہ ہوئی، ہماری آمین ہوئی، قرآن خانی ہم نے خود ہی بنا لی۔ قرآن سے تعلق کی بہت ساری ڈوریاں آج ہیں موجود، لیکن جو کٹی ہوئی ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آتی، اور اس سے پھر قرآن سے دوری ہوئی، مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے، بہت 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 ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم سب اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس آیت کا پورا انداز نہ سمجھ لیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس کو ہجران کہتے ہیں، ہجرت ہے نا ہجرہ سے، یعنی یہ ہجران قرآن کیا ہے؟ اس کو ذرا سا اگر آپ اور میں سمجھنے والے بن جائیں تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اسی لیے فرمایا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ خزولہ، جو دشمن وقت پہ ساتھ چھوڑ دے، یعنی ہو دوست اندر سے دشمن تھا، اینڈ ٹائم پہ آپ کو دغا دے جائے، اس کو خزول کہتے ہیں۔ شیطان کی یہ وصف ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ کیسے آپ دیکھیے کہ لوگ اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں؟ آپ ذرا سے اس ماحول میں اپنے ذہن کو لے جائیے جہاں اللہ کے نبی پر یہ قرآن اتر رہا تھا۔ صدیوں کی روایتوں کے مقلد ہو چکے تھے مکہ والے، نام تو ابراہیم اور اسماعیل سے جوڑتے تھے لیکن بات کوئی بھی نہیں تھی ان کی۔ اللہ کے نبی نے قرآن پیش کیا، کہا میرے پاس فرشتہ آیا تھا، میں تو نبی ہوں، تو کہ اچھا اگر آپ کے فرشتہ آ سکتا ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ لولا انزل علینا الملائکہ، تکبر ہے۔ جیسے آپ ناروے میں رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ اس ملک کا کنگ یا جو بھی اس ملک کا بڑا ہے وہ خود آ کر ہمیں بتائے کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، اور آپ یو کے میں رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی آ کر خود ہمیں کہے کہ آپ ذرا اسپیڈ لمٹ یہاں پہ کم ہے، اتنی رکھیے پھر ہم چلائیں گے۔ تکبر کی بات ہے۔ کیا بڑے لوگ ہر ایک سے بات کر پاتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، کیسے ہی ایکسٹراڈنری پروٹوکول کے طلبگار اکثر ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج بھی قرآن کی دعوت آپ لوگوں کو دیں نا تو یہ ریزینٹمنٹ اندر ہوتا ہے، کیا ہم، میں جو میں پڑھوں، مجھے بیٹھنا پڑے گا، اچھا مجھے رولس ماننے پڑے، اوکے نو آئی ایم فائن، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا عالم الشہادہ ہے، یہ عمل کی مہلت کا وقت ہے۔ میں اور آپ اپنے مشاہدے سے اس دنیا میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، کل یہ مہلت ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم عالم الغیب میں پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ایسی جیسے پڑھنے کے دنوں میں پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جب رزلٹ یا پیپر آتا ہے یا اس سے پہلے امتحان ہوتا ہے تو اس دن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بہت ساری نیکیاں بھی کی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حبا منصورہ کر دے گا، عیش بنا دے گا ان اعمال کو جن کے نیچے صحیح عقیدے کی بنیاد نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، اتنی بڑی نیکیاں، اتنی بڑی چیریٹیز، اتنے بڑے بڑے فنڈس، تو یاد کیجئے 9/11 کو، چند منٹوں میں اللہ نے اتنی بڑی بلڈنگ کو عیش بنا دیا، اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ फिर अगली बात देखिए कि ये जो आखिरी बात है ना कि रसूल के साथ दुश्मनी यानी बुरी दोस्ती, ख़ास तौर पे इसके पीछे एक वाक़या है अल्लाह के नबी के दौर में। लंबी बात का खुलासा ये कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तरफ इंक्लाइंड हो चुका था, लेकिन उसके दोस्तों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम अल्लाह के नबी की बेइज्जती नहीं करोगे हम तुम्हारे घर खाना नहीं खाएंगे। तो अरब लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होते थे कि घर आया मेहमान बुक करना जाए, तो उस शख्स ने वो कर दिया अल्लाह के नबी के मामले में जो उसको नहीं करना था। तौहीन रिसालत की एक मिसाल थी, उस पर यह आयतें उतर गई कि दोस्तों को खुश करने के लिए मेरे रसूल का तुमने मजाक उड़ा दिया। और आज अगर आप और मैं अपने ऊपर लेख कर देखे थे तखस तुमार रसूली खलीला, यानी रसूल को काबिले तआज़ीम तो समझते हैं काबिले तकलीद नहीं समझते। और याद रखिए कि शैतान जो खलील के रूप में आता है ना, असल में वो कौन होता है जो कोई गलत चीज़ को अच्छा करके दिखाए। हमारे जहनों में शैतान का एक तसव्वुर है, बहुत काला सा सुरख सा मुँह से धुआं निकलता दुम, ऐसा नहीं है। शैतान अमूमन सिंसियर दोस्त बनकर आता है, कभी दोस्तों के रूप में, कभी औलाद के रूप में, कभी माँ बाप के रूप में हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। कैसे पता चले कि हमारे इर्द गिर्द वाले क्या हैं? तो हर वो हस्ती जो अल्लाह के हुक्म को पीछे डालकर, आपको अल्लाह के हुक्म से दूसरी तरफ डालकर, नफ्स के हुक्मों पे चलाने लगे, मुआशरे को आगे करने की दावत दे, समझ लीजिए कि वो दुश्मन है, वो शैतान है। चाहे अल्लाह के रसूल के बारे में बात करने वाला कितना ही बड़ा बंदा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा एंकर क्यों ना हो, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी क्यों ना हो, आप किसी के एक्सेंट से ना बात करें। ऊपर आपको एक हदीस आज इसीलिए सुना दी गई जो असल में इस आयत के साथ है कि अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर आज लोग बातें करेंगे। वो कहते हैं कुरान को कुरान से समझो, तो रसूल को काट कर कुरान को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जोड़ना। ऐसे तमाम लोगों के लिए कल क़यामत का दिन क्या होगा? अब देखिए आयत 30 को जो इस बारे की थीम आयत है, वक़ालर रसूलु या रब्बी नकौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा। और रसूल कहेंगे क्या मेरे परवरदिगार बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। छोड़ रखा था? ये कैसे छोड़ रखा था? पढ़ते तो थे समझते नहीं थे, इन्होंने मेरे कुरान से हिजरत कर ली थी। कैसे? जहनी हिजरत हो गई इनके कुरान से, कुरान कुछ और कहता था इनका जहन मानते ही नहीं। इन्होंने इस कुरान से अमली हिजरत कर ली, इनके दिलों ने हिजरतें कर ली। इमेजिनेशन में लाइए मैदान महशर, अल्लाह के नबी खड़े हैं और एक पुकार है, उम्मीद शिफात की थी, मुंतजर शिफात के थे, लग शिकायत रही है कि अल्लाह इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस कुरान के ऊपर अमल नहीं किया, कुरान से पीठ मोड़ ली थी। इन्होंने कुरान को पकड़ा भी तो सवाब समझकर पकड़ा, बरकत के लिए पकड़ा, भूत भंगाने के लिए पकड़ा, नया घर में जाकर सूरत फातिहा और सूरत बकरा पढ़ने के लिए पकड़ा। इन्होंने इस कुरान को पकड़ा था लेकिन दुल्हा दुल्हन के सर पर रखने के लिए पकड़ा था। ज़रा से पीछे मुड़ कर देखे पूरा शादी हॉल इस कुरान का मजाक उड़ाता दिखता है। इनके हाल हुलिये देखिए, इनकी बेटियों का सजना संवरना देखिए, ये सब दिख रहा था कि इन्होंने कुरान को पकड़ कर भी छोड़ दिया। आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी पे एक गौर भरी नज़र डालकर देखें तो आज उम्मत मुस्लिमा ही वो उम्मत लग रही है कि जिनके बारे में क़यामत के दिन हो सकता है ऐसी शिकायतें लग रही हों। अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए। तो फिर कुरान को छोड़ना क्या है? हिजराने कुरान क्या होता है? कुरान की तस्दीक ना करना, इस पर ईमान न लाना, कुरान पाक के अहकामात पर अमल ना करना, तिलावत ना करना, तजवीज़ सही ना करना, ये भी एक ख़ास हद तक इसी में आता है। टेढ़ा मेढ़ा पढ़ते हैं, पंजाबी का कुरान हम पढ़ते हैं, हम उर्दू का कुरान पढ़ते हैं, अरबी कुरान तो हमारे पास से ना छूके गुजरा। फिर आप देखिए इस पर तदब्बुर ना करना, पढ़ते ही जा रहे हैं गौर व फिक्र नहीं करते। और कुरान पाक को छोड़कर लगवियात की तरफ तवज्जो देना, ये सब कुरान पाक को छोड़ने की तरफ है। मैच आ जाए तो हम क्लास छोड़ने को तैयार हैं, शादी आ जाए तो हम नमाज छोड़ने को तैयार हैं। तो देखिएगा ज़रा कि कुरान पाक को तर्क करने की क्या सूरतें होती हैं। पहली बात क्या है? कुरान पाक के एक हिस्से पे अमल करना, बाकी को छोड़ देना। अफतुमेनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, पहला ही पारा याद कीजिए, अधूरी इताअत का फितना। इसी तरह कुरान पाक के हकूक़ पूरे न करने, पांच हकूक़ हम पीछे देख चुके हैं। कुरान पाक को छोड़कर दूसरी किताबों को तरजीह देना। आज अपने बच्चों का सिलेबस खोलिए, मास्टर्स तक पहुंच जाएं आप, इवन आप इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स कर लीजिए, पूरे कुरान का तर्जमा तक उसमें नहीं है। है ना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया कि बच्चा सारी किताबें पढ़ जाता है लेकिन कुरान का एक पारा भी उसको तर्जमे से नहीं पढ़ाया जाता। اسی طرح قرآن پاک کے مطابق فیصلے نہ کرنا گھر کی عدالتوں میں بھی اور ملک کی عدالتوں میں بھی، قرآن پاک کے مطابق زندگی نہ گزارنا یہ بھی چھوڑنا ہے، قرآن پاک کی تعلیم، تدریس اور تبلیغ ترک کر دینا، قرآن پاک کی آیتوں سے اپنے بیماروں کا علاج نہ کرنا، ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹائم لینے کے لیے لائنوں میں لگے رہتے ہیں لیکن قرآن جو شفا ہے اس کو نہیں مانتے، تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق تو جوڑنا لیکن اس کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ ہے قرآن کو چھوڑنا۔ اس کے حقوق کو ذرا دہرا لیجئے، یعنی اس کو مانیں ایمان اور تعظیم کے ساتھ، قرآن کو پڑھنا ہے تلاوت اور ترتیل کے ساتھ، اس کو سمجھنا ہے تذکر اور تدبر کے درجے پہ لا کر، اور اس پہ عمل کرنا ہے یعنی اس کے حکم پہ بھی عمل کرنا، اور اس کو اقامت دین میں بھی لے کر آنا ہے، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا ہے تبلیغ اور تربیت کے ذریعے۔ اس قرآن کے کل قیامت کے دن حقوق جب تک نہ دے چکے ہوں گے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آج حقوق کی تو بڑی بات کی جاتی ہے لیکن حقیقت ہے کہ آج اس امت کے پاس قرآن تو ہے لیکن اس کا فہم، اس کی سوچ، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور امیجن تو کیجئے کہ وہ لوگ جو شفاعت کے منتظر تھے اور اللہ کے نبی کی یہ پکاریں سن رہے ہیں، اس وقت ان کے پاؤں من من بھر کے نہ ہو جائیں گے؟ کیا دل کے اوپر گزر رہی ہوگی کہ واقعی ہم نے کیسے مذاق اڑایا اس قرآن کا؟ تو ایک بار شعور کے ساتھ کہیے، اے اللہ اب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے۔ میں آپ سب کو کہوں گی، جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو الحمدللہ اس ٹیسٹ کو چکھ چکے ہیں، جو ہمارے نئے ساتھی جو اس سال دورے قرآن میں ملے، اور میں اکثر دورے قرآن والوں کو ان کے چہروں کو یا اگر آن لائن پہ کرے تو ان کی آئی ڈیز کو اس شوق اور رغبت سے دیکھتی ہوں کہ اللہ بن میں سے کون ہے جو اگلے کورس میں آئے گا، اور اللہ کی رحمت سے دورے قرآن کا ہی بیج بنتا ہے اگلے سال کے دورے قرآن کے لیے اور اگلے سال کے ڈیٹیل قرآن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شامل کرے، دعا کیجیے آج، کہیے کہ اللہ مجھے اب قرآن سمجھنا ہے، اور اگر آج یعنی یہ بات آپ کہیں اور آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے، رمضان کے بعد عموماً عید کی تھوڑی سی چھٹیاں دے کر نئے کورسز شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے سال کے دورے قرآن تک عموماً 10-12 ترجمے کے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سا کورس لیا۔ پھر وہ جو 10-12 آپ اگلے سال سنیں گے نا تراویح میں، تو پھر آپ ہمیں میسج کرتے ہیں روتے ہوئے کہ بہت شکریہ، آپ ہمیں پہلی دفعہ تراویحیوں کا مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تارک قرآن نہ بنائے۔ ایک اور اینگل سے اس کو دیکھیے، اللہ کے نبی کی چند احادیث کا خلاصہ ہے یہ کہ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تارک قرآن کے بارے میں شکایت کیا ہوگی؟ اسلام کا نام رہ گیا، قرآن کی رسم رہ گئی۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اسلام نہیں بچے گا الا اسمن، اور قرآن نہیں پڑھا جائے گا مگر الا رسمن۔ آج ہم رسمی طور پہ پڑھتے ہیں، تھوڑے سے لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر قرآن پڑھتا دیکھے تو ایک دم فکر لگ جاتی ہے، کوئی فوت تو نہیں ہو گیا، یہ کس کے کل ہو رہے ہیں، یہ کس کی رسمیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی تعلیمات پر من و ان عمل نہ کرنے کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ ظاہر ہے کہ دوری بات سنیں گے پوری سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پوری مانیں گے کیسے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسجد کے قریب رہتے ہوئے بھی مسجد میں نہ آنا، ہیں آج ایسے مسلمان؟ وجہ کچے نمازی اور قرآن سے کمزور تعلق۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی مسجدیں بھی لوگ بنا دیتے ہیں لیکن خود وہاں 5 وقت نماز پڑھنا محال لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ ایون مسجد کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی کبھی کبھار ہی دکھتے ہیں، اور ان کے بچے نہیں وہ کہاں آئیں گے، وہ تو ان کی تو جاب ہی بڑی سخت ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ساری شکایتیں، یہ سارے حالات قیامت کے دن جب مسلمانوں کے سامنے کھلیں گے اور مسلمان ان چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھائیں گے تو امت میں خیر نہیں آئے گی۔ امت کے پودے کے اندر جو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ حالات نظر آتے ہیں، وہ اس میں خزاں کے حالات ہیں، پتے ہلکے ہلکے پیلے ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نہیں سمجھا۔ حضرت عمر کے دل میں کس چیز نے ہدایت کا بیج ڈالا؟ وہ ایک بہن تھی جس نے قرآن پڑھا اور عمر کے دل میں قرآن کی طلب جاگی۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے علامہ اقبال کہہ کے کہ عورت تو اٹھ قرآن پڑھ، کہ تیرے قرآن پڑھنے نے عمر کے دل کی حالت بدل دی تھی۔ آج کی عورت کے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو بچوں کے ہاتھ میں بھی آئے گا، اور پھر گھروں میں جب قرآن آتا ہے، باپ، شوہر، بھائی، بیٹے، تو پھر حقیقت میں وہ قرآن آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی خیر لے کر آتے ہیں۔ یہ قرآن فہمی کی صدی ہے۔ اس دور میں اگر آپ نے، میں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کر لیا، اس کو پا لیا، تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد بہت ساری خیر آنے والی ہے۔ نیت کیجئے، دعائیں دیا کریں اپنی نسلوں کو کہ ہم نے اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑ کر دنیا سے جانا ہے، और ऐसा नहीं करना कि वो हमारे बाद हमारा ही जैसा कुरान पढ़ें कि जो पढ़ें तो सही लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे भी ना उतरे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो कुरान पाक के साथ एक सुना सुनाया और वाजबी सा ताल्लुक़ रख भी लेते हैं लेकिन ऐन वक्त पे जब गुनाह की रग़बत हो तो वो कुरान इंसान को नहीं रोकता, नहीं आता। क्यों नहीं आता? सबको पता है, क्योंकि बात समझ नहीं आती। तो आज दिल की गहराइयों से तड़प के साथ ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे पुराने गुनाहों को माफ़ कर दे। एक जुमला ज़हन में लाती हूँ और आप भी उस पर इंशाल्लाह मदद करें मेरी, कि आखिर ये फितना उठा क्यों, यानी इस फितने की वजूहात क्या हैं कि हमने कुरान को समझे बगैर ही पढ़ना समझ लिया, और कई सदियों से हम, कई नस्लों से हम पढ़ रहे हैं ऐसा। तो पहली बात है कि हमें फ़ज़ाइले कुरान से आगही नहीं, लाइल्मी है। दूसरी बहुत बड़ी वजह कुरान को समझ के ना पढ़ने की नफ्स और ख्वाहिश परस्ती है, क्योंकि इस पे थोड़ा सा सब्र तो शुरू में करना पड़ता है। इसी तरह फिर सिर्फ दुनियावी तालीम पे इक्तफा करना कामयाबी की दलील समझा। आज आपका बच्चा 20 साल का हो चुका है, अभी तक उसको कुरान क्यों नहीं आया? 15 साल के बच्चे बच्ची ने अभी तक कुरान क्यों नहीं पढ़ा? वजह यह कि हम उनकी दुनिया की तालीम पर परेशान रहते हैं। फिर इसी तरह देखिए कि कुरान को हिदायत की बजाय बरकत की किताब समझा, ये बहुत बड़ी वजह इस फितने के पीछे। और एक ऑफ कोर्स बड़ी रूट कॉज तो हम शैतान को कहते ही हैं। फिर इसी तरह मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी, आज तालीम लेने पे या फिर घर सजाने पे और कमाने पे इतने मसरूफ़ हो गए कि हमें कुरान पाक को लफ्ज़ी तर्जमे के साथ समझने की मोहलत ही ना मिली। फिर इसी तरह इसको मुश्किल किताब समझने की गलत फहमी है। कुछ लोगों ने ये दिया कॉन्सेप्ट कि ना ना ना, कुरान आम लोगों के पढ़ने की चीज़ नहीं, ये तो उलमा और फजला की चीज़ है, और नौज़ु बिल्ला अगर औरतें पढ़ाने लग जाएं ये तो फितने फैला रही हैं। ये भी सोच हुई। याद रखिए कि बनी इसराइल की तारीख में वो वक्त गुजरा कि तौरात सिर्फ और सिर्फ वक्त का प्रीस्ट पढ़ता था और बादशाह तक की रसाई नहीं थी उस किताब में। तभी तो अमेंडमेंट्स हो गई, कोई पहचान ही ना सका कि किसने कहाँ खयानत कर दी। और तौरात घरों में रखना जुर्म था, एक दौर था बनी इसराइल में। आज अफसोस है कि नबी की उम्मत में भी कुछ ऐसा ही हो गया। किताबें मारूफ हैं, लोगों की लिखी हुई बहुत खूबसूरत किताबें, कहीं फजाइल के नाम पे, कहीं मसाइल के नाम पे, कभी फिक के नाम पे, लेकिन कुरान आज बहुत कम है। और अगर पढ़ें भी तो 5 सूरा खोल के पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे तो दुनिया का ये सवाब, इसको पढ़ेंगे तो रिश्ते हो जाएंगे। यानी आज हमने कुरान पढ़ा भी तो अपनी दुनिया सजाने और संवारने के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी वजह है लगवियात। जब ज़िंदगी में लगवियात आती हैं, टाइम किलर्स होते हैं, जब इंसान बेकार मशगलों में पड़ता है, तो फिर कुरान पढ़ने का वक्त मिलता भी नहीं। और फिर एक बहुत बड़ा फितना जो अक्सर साथियों की ज़ुबान से सुनी गई बात में से है कि सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा, इसलिए ना सुनो ना अमल करो। अभी तक आपको तो 18 पारों में नहीं मिला होगा ये जुमला, और मेरी गवाही ले लीजिए कि अगले पारों में भी आपको नहीं मिलेगा कहीं ये जुमला कि कुरान ना पढ़ो फिर अमल नहीं करोगे तो गुनाह नहीं होगा। और फिर जब ऐसे हालात होते हैं कि कुरान के साथ एक रस्मी और वाजबी सा ताल्लुक़ है तो कुरान एक फरियाद करता है। माहिरुल कादरी साहब की बड़ी मारूफ पोएम है जो इसी आयत की बेहतरीन अक्कासी है। कहते हैं कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, जुस्तान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से भरकर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ, जिस तरह से तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ, किस बस में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसे भी कोई मज़लूम नहीं। क्या आपको दर्द महसूस हो रहा? तो इससे ये भी पता चला कि उम्मत कुरान पढ़ती है, इतना कुछ कुरान के नाम पे तो हो रहा है लेकिन जो असल मकसद था वो नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इस कुरान को लेकर अपने ख़ानदानों में, अपने घरों में, अपनी गलियों में लेकर चलने और फिरने वाला बना जाए और हम इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। फिर इसके बाद अगली आयत देखिएगा, वकज़ालिका जालना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वम मिनल मुजरिमीन, और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बास गुनाहगारों को बना दिया, और तेरा रब ही हिदायत करने वाला और मदद करने वाला काफ़ी है। اور کافروں نے کہا، اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ہی ساتھ کیوں نہ اتار دیا گیا؟ اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھے، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا، اس بارے میں اعتراضات بہت ہیں، قرآن پاک کا لفظ اس میں بھی بہت دفعہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب واقعی گھر گھر میں قرآن کو کریٹیسائز کیا جا رہا تھا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مشرقین کا اعتراض ہے کہ آپ پر سارا قرآن اکٹھا ہی کیوں نہیں نازل ہو گیا، جیسے تورات اکٹھی نازل ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا، چند دن وہاں عبادت کروائی گئی اور تبتل اختیار کیا، یعنی سب سے اکٹھے اللہ نے تورات دے دی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو شرک کرتا دیکھتے ہی وہ تختیاں موسیٰ کے ہاتھ سے گریں اور ٹوٹ گئیں، لیکن قرآن تو آپ جانتے ہیں 23 سال میں تقریباً پورا ہوا، تو کیوں؟ جواب لے لیجئے کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو، اس کو سمجھنا اور اس کو جذب کرنا آسان ہو۔ پھر بعض احکامات پہلے مشکل تھے، پھر آسان کر دیے گئے تاکہ مومنوں کا دل جمع رہے۔ تو قرآن کے تدریجی نزول کی حکمتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پریشر تھا، بہت تکلیفیں دی جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تکالیف اور مصائب میں تسلی دینے کے لیے آیات کا نزول کرتے تھے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ تو ایک دفعہ آسمان دنیا پہ بھیج دیا گیا لیکن وہاں سے قلب اتھر پہ تقریباً 23 سال میں بھیجا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور پچھلی کتابوں کے بیچ میں یہ ایک بنیادی فرق رکھا، جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی عظمت اور شان کو واضح کرنا بھی مقصود ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بارش تھوڑی تھوڑی برستی ہے وہی اندر جاتی ہے، پنپتی ہے۔ ابھی بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے دورہ قرآن سے الحمدللہ، لیکن جو ہی آپ نیا کورس شروع کریں گے جس میں لفظ بر لفظ ترجمہ ہوگا تو آپ سوچیں گے، اچھا ہم تو دورہ قرآن بھی تھک جاتے تھے اور ہمیں لگتا تھا اتنی ڈیٹیل کیوں کرتے ہیں، جلدی جلدی ختم کریں، تو وہ تو بہت ہی مختصر تھا۔ تو تھوڑی تھوڑی چیز، جس کو کہتے ہیں نا کہ سہج پکے سو میٹھا ہو، ہلکی آنچ پہ جو سلو کوکنگ ہوتی ہے وہ کھانا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا، یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ دلیل آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ یہ ہے اصل میں قرآن، ادھر سے وہ مکہ میں آپ کے اوپر باتیں چھانٹتے تھے، آسمان سے تسلیوں بھری باتیں آ جاتی تھی۔ اب اگر اللہ کے نبی عربی نہ جانتے ہوتے، نہ سمجھتے، تو کیا آپ کو یہ ساری باتوں سے فائدہ ہوتا؟ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ اللہ اپنے نبی کو پچھلے لوگوں کے حالات بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے دکھوں اور غموں اور تکلیفوں میں اپنے آپ کو جمع کر رکھیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بہت تکلیف ہونا تو انسان کو کسی دوسرے کو سوچ لینا چاہیے۔ تھوڑا سا محاسبہ کرتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے وقت اپنا۔ مکہ کے مشرقین اور مدینہ کے یہود اور نجران کے نصارہ، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، یعنی لوگ اچھے لوگوں سے نسبت تو جوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان جیسی قربانیاں اور ان جیسی ہجرتیں کرنا ان کو مشکل لگتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف تعلق جوڑنے سے کوئی اس نام کے ساتھ جڑ جائے گا؟ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے؟ جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بالکل اسی طرح کیا ہم قرآن کے ساتھ ایسی ہی نسبت رکھتے ہیں جیسا اس کا حق ہے؟ کیا صرف قرآن پاک کو پڑھ لینے سے اس کا حق ادا کرنا ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پچھلے نبیوں کی قوموں کا بھی یہی قصور تھا کہ انہوں نے صرف نسبتوں کے ساتھ جنت لینی چاہی۔ آج امت مسلمہ بھی کسی حد تک ایسے ہی ہو گئی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعمال فرعون کے ہوں اور انجام موسیٰ علیہ السلام والا ہو؟ جب ہم اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کو لیتے ہیں تو پھر خواہش پرستی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ لکھ لیجئے کہ خواہشوں کی ڈوریوں کو کاٹیں گے تو پھر آپ کی میری زندگی میں بہت سارا وقت آئے گا اور پھر بہت ساری خیر بھی آئے گی۔ ایک پچھلی قوم کی بھی مثال دے دی گئی، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور عادیوں اور ثمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کیں، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ قومیں جن کے بارے میں مکہ والے جانتے تھے۔ ये लोग इस बस्ती के पास से भी आते जाते हैं जिन पर बुरी तरह बारिश बरसाई गई। क्या ये फिर भी इसे देखते नहीं? हकीकत है कि इन्हें मर कर जी उठने की उम्मीद ही नहीं। इशारा है कौम लूत की तरफ, होमोसेक्सुअल्स, क्योंकि ये कौमें भी आसमान से पत्थरों की बारिश का शिकार हुई थी। और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं कि क्या यही है वो शख्स जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा? जरा सोचें, आपका आज कोई ऐसे मजाक उड़ा? अच्छा, आप हैं कुरान पढ़ती? अच्छा, आप पढ़ाती हैं? ओके, उस सर से पौन तक लोग आपको देखेंगे। ओके ओके, नहीं ठीक है ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। यानी मजाक करने का अंदाज, टॉन्टिंग स्टाइल। वो तो कहिए कि हम इस पर जमे रहे, वरना इन्होंने तो हमें अपने माबूदों से बहका देने में कोई कसर न छोड़ी थी। और ये जब इन अजाबों को देखेंगे तो इन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह राह से भटका हुआ कौन था। देखिए, गलत चीज़ों पर जमने को, अपनी ढिटाई को अपने लिए टाइटल दे रहे हैं, लौला अन सबरना। लोगों को जब हक की बात दी जाए तो लोग उस हक के बदले में ऐसी ही बातें करते हैं। और याद रखिए कि जब लोग कुरान को समझने और सीखने की नीयत के बगैर पढ़ेंगे तो क्या होगा, जिसका जिक्र आयत 43 में आगे आ रहा है। और ये वो आयतें हैं कि जिनको पढ़कर वाकई फिक्र लग जाती है कि कहीं मैं भी अपने नफ्स को तो नहीं पूज रही, ख्वाहिश परस्त तो नहीं हो गई। आ रही तमनी तखज इलाहु हवाहु, और क्या आपने इसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए? क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं वो तो निरे चौपायों जैसे हैं, यानी कैटल्स, बल्कि इनसे भी ज्यादा भटके हुए हैं? यहाँ क्या पता चला? ख्वाहिश नफ्स, आरई तमन तहजा, अहम आयत है। याद रखिए कि ख्वाहिशात ही हैं जो इंसान को परेशान करती हैं। जब सुन्नत से कुरान को काटा तो ख्वाहिश नफ्स की रोशनी में कुरान को समझा। और ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश की वजह से इंसान अपनी मंजिल को खो देता है। बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको सिरे में से ना पकड़े ना तो आप अल्लाह की पकड़ का जरिया बन जाती हैं। ये वही ख्वाहिश है जिसने इब्लीस को मर्दूद करार दिया। ये वही ख्वाहिश है जिसने काबिल को अपने ही भाई की जान लेने पर मजबूर किया। और ये वही ख्वाहिश है कि जो आज उम्मत मुस्लिमों का सरपट भगा रही है। ऐसी बातें करने वाले जब लोगों को ख्वाहिशों पे पांव रखने को कहते हैं तो लोग आगे से फिर ऐसी बातें करते हैं, लौलान सबरना, उन्होंने तो मुझे बड़े ही फ़ोन किए, उन्होंने तो मुझे बड़े ही मैसेज दिए, फिर मैंने भी नहीं रिस्पॉन्स दिया, फिर मैंने ब्लॉक ही कर दिया। तो याद रखिए, जब ऐसे लोग होंगे, जब खालिक की बंदगी अपने लिए शर्मिंदगी इंसान समझ ले, तो कल नाम बल हम अदल। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों के लिए अब कायनात की कुछ मिसालें देते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साय को किस तरह फैला दिया? यानी तुम नहीं झुकते, तुम्हारा साया तो झुका ही हुआ है। अगर चाहता तो इसे ठहरा हुआ ही कर देता। फिर हमने आफ्ताब को इस पर दलील बनाया, फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया। यानी इतना बड़ा सूरज लेकिन रब के आगे झुका हुआ। सुम जाल न शम्स अलैहि दलीला, तुम कबज ना हो ना कब्दा यसीरा। टॉपिक चूँकि कुरान से ताल्लुक़ है तो यहाँ आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जब हम कुरान को समझकर नहीं पढ़ते तो बाज़ दफ़ा कुरान को फिर वजीफ़ों की किताब बनाते हैं। एक दफ़ा एक बच्ची ने मेरे साथ शेयर किया कि मुझे किसी ने कोई आयत लिख कर दी है कि शादी नहीं हो रही तो जिस लड़के से भी चाहते हो ख्वाहिश है उसका तसव्वुर करो, कुरान की यह आयत फलां इतनी इतनी दफ़ा पढ़ो। तो आप ज़रा चेक कर दीजिए, खोला तो ये आयतें थी जो आपके सामने हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना कोई टेक्स्ट मिलता है, ना असाब के, ना लाख के। तो मेरा दिल रोया कि इस उम्मत का अब यही हशर होना था कि कहाँ सूरज की बंदगी और अल्लाह के आगे पीछे होने की बातें हैं, और उसको किसी लड़के को कब्ज़ ना हो का लफ्ज़ है कि उस लड़के को कब्ज़े में कर लो। आज ऐसा दीन देने वाले बहुत सारे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन तक भी हमें सच्चा और साफ़ सुथरा दीन पहुँचाने की तौफीक दे। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को खड़े होने का वक्त। और वही है जो बारान रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं। ये कायनत बोल बोल कर बता रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो बारिश बरसती है उससे क्या होता है? ताकि इसके ज़रिए से मुर्दा शहर को ज़िंदा कर दें, और इसे हम अपनी मखलूकात में से बहुत से छुपाएँ और इंसानों को पिलाते हैं। और बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के माना नहीं। जैसे आसमान से बारिश बरसती है तो ज़मीन के वही हिस्से उससे फ़ायदा उठाते हैं जिनके अंदर कुछ दमखम होता है, और अगर वो ना हो तो फिर उसके बरक्स क्या होता है, यह आप और मैं खुद अच्छी तरह समझते हैं। अब आगे अहम आयत आ रही है जिसका ताल्लुक़ हमारे इस बारे के थीम से भी है ख़ास तौर पे, और इलाज और तरीक़ाकार बताया जा रहा है। आयत नंबर 51। अगर हम चाहते तो हर हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन अल्लाह बड़ी बस्तियों को चूज़ करता था और वहाँ अम्बिया कराम को भेज देते। क्या पता चला कि रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। और क्या कीजिए, फला तो तील काफरी न वजा है तुम भी ही जिहादन कबीरा। बस आप काफिरों का कहना न माने और कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत से बड़ा जिहाद करें। और वही है जिसने दो समंदर आपस में मिला रखे हैं, ये है मीठा और मज़ेदार और ये है खारी कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब और मजबूत ओट कर दी। तो आयत 52 वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। मक्की सूरतों में जिहाद का लफ्ज़ आया जबकि अभी जिहाद बिल किताल यानी जिहाद तलवार के से करने की तो इजाज़त ही नहीं थी। तो आइए ज़रा सी इस आयत की रोशनी में देखते हैं कि यहाँ जिहाद कबीर से क्या मुराद है। असल में अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात का एहसास दिलाया कि इल्मी जिहाद करो, जिहाद बिल लिसान करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के 13 साल जो जिहाद किया था वो क्या था कि कुरान को वसी पैमाने पे लोगों तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। और यही आज के दौर में करने का काम है, यही जिहाद है। कुरान से जिहाद जिहाद कबीर है, क्योंकि इसके करते ही लोग आपके दुश्मन होने लगते हैं। लोग आपके साथ ऐसे मुकाबलेबाजी करेंगे कि पता नहीं आप क्या लेंगे। इस कुरान को शहर की माशरे की दुनिया की आखिरी जगहों तक पहुँचा दो। आप देखिए कि माली पानी देता है ना, अगर पत्तों को धोया जाए टहनियों को साफ़ किया जाए फ़ायदा नहीं होगा। आप उस दरख्त की जड़ों में पानी दीजिए, चंद घंटे बाद अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक वो पानी पत्तों तक और टहनियों तक पहुँच जाएगा। इसी तरह कुरान का पानी आपने मैंने रूट्स को देना है। ग्रास रूट से ऊपर उठकर हर दर्जे पे कुरान को पहुंचाना है। क्यामत के दिन 1 डिग्री भी नहीं होगी मेरे पास इस कुरान की, दुनिया की इतनी डिग्रियों के मुकाबले में। आप देखिए कि 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुज़ुर्ग तक इस कुरान को पहुंचाना है। अल्लाह ताला आपको मुझे यहाँ दावत देते हैं कि तुम उठो और इस किताब को लेकर निकल चलो। तुम्हें अल्लाह ने दे दिया ना, अब इसको लेकर फैलाओ। कैसे फैलाना है? पत्तों से टहनियों से नहीं, रूट्स के साथ जुड़े हुए। पेवस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख। जितना मैं इस मौजू पे बोल सकूँ मैं इसका हक अदा नहीं कर सकती कि आज हम कुरान के नाम पर जो तरीके भी इख्तियार करते हैं वो भी फितरत से कटे हुए हैं। हम थोड़ा सा कुरान पढ़ते हैं, हम कहते हैं बस मैंने अपनी क्लास शुरू कर ली है। आप देखिए गली गली मोहल्ला मोहल्ला अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन भी कुरान पढ़ाती हैं, बुज़ुर्ग भी पढ़ाते हैं, मर्द भी पढ़ाते हैं। खैर उस तरह नहीं आ पा रही, वजह क्या है कि पीछे से जड़ें कटी हुई हैं। आपने 2 साल लगाकर पढ़ा और आप उसको पढ़ाने लग गए, क्या उसका वही लेवल होगा जो किसी ने सारी ज़िंदगी का खून निचोड़ कर आपको दिया और उसमें से लिया आपने? क्या करें फिर, आप कहते हैं बल्ली गन्नी वलऊ आया। बल्ली गन्नी वलऊ आया का मतलब अगर आज किसी ने समझा तो व्हाट्सएप के मैसेज आगे से आगे करने वालों ने समझा। अल्लाह अकबर कबीरा, खुद पढ़े ना पढ़े आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए एक बात आप कहते हैं और एक बात है कि किसी की कही भी बात आप आगे पहुँचाते हैं। आपको पता है कि अभी मेरी बात में इतनी पुख्तगी नहीं है, अभी वो तासीर नहीं है, अभी वो अमल नहीं है, और जिनके आगे करूँगी उनके पास मेरी पिछली ज़िंदगी सारी पड़ी हुई है जो मुझे इल्ज़ाम देंगे। तो अगर आप वो बात कहकर किसी को कहते हैं कि जैसे भिड़ों के छज्जे में हाथ डालते हैं, अगर आप किसी की अच्छी कही हुई बात एज इट इज़ थोड़ी सी अपनी फीलिंग और थोड़े से आसान हल्के साथ पहुँचा दें, कौन सी बड़ी नेकी होगी। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आपको नहीं पढ़ाना, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ अगर मैं आपको पढ़ाने से रोकूं, लेकिन जाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। पहले इसके लिए जान लगाइए, वक्त लगाइए, माल लगाइए, सेहत लगाइए। जब तक आप फोकस्ड हो के कम अज़ कम 10 से 12 साल नहीं पढ़ पाते आप अपने इस जिहाद के काबिल नहीं होते। जो मेहनत करते नहीं वो कल करवा नहीं सकते, जो आज रूल्स मानते नहीं वो कल मनवा नहीं सकेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अल्लाह ने आपको मुझे कहा है पढ़ें, और याद रखिए कि इस जिहाद का नुक्ता आगाज़ कहाँ से होता है, जिस दिन घर में किताब खुलती है। कुछ दिन लोग बड़े खुश होंगे, मेरी बेगम ने कोर्स ज्वाइन किया है, आप जी ये पढ़ेंगी, लेकिन जो ही ज़रा छोटी मोटी बातें और जब हिकमत ना और आप तनकीद शुरू कर दें वक्त से पहले, तो फिर लड़ाइयाँ भी शुरू होंगी। फिर कहेंगे रोटी नहीं पकी, अंडा नहीं बनाया, कहीं ससुराल में रहते हैं तो छुप छुप के काम करना है। यानी जिहाद का लफ्ज़ कुरान के साथ शुरू हो जाता है। मक्का वालों ने कितनी मेहनतें करके इस किताब को पहुँचाया। अल्लाह ताला कहता है कि जूँ ही तुम इस किताब को लेकर निकलोगे लोग तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ जाएंगे कि शायद तुम उनकी सारी ख्वाहिशें ले रहे हो। तो आपने मैंने इसके लिए मेहनत करनी है, और जब आप जिहाद बिल कुरान करेंगे ना, आपके सामने पांच बड़े बड़े महाज हैं। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे डॉक्टर इसरार साहब को। क्या खूबसूरत तरीके से वो इस आयत को पढ़ा कर गए, समझा कर गए। वो कहते हैं कि जब आप कुरान पढ़ते हैं फिर आप पढ़ाने निकलते हैं, या आप कुरान को फैलाने के लिए निकलते हैं, तो आपके सामने पांच बड़े बड़े महाज हैं। सबसे पहला तो आप देखिए कि वो महाज है जिसको शिर्क कहते हैं। आज भी आपके मेरे मुसलमान मुल्क जिसका नाम ही इतना पाक है, उसमें भी 90% आबादी में शिर्क है। सबसे पहले आपके सामने वो बड़ा महाज है कि अपने मुआशरों और अपने इर्द गिर्द के लोगों में से शिर्क को ख़त्म कीजिए। अल्लाह के नबी की शिफात के बारे में जो बातिल नज़रियात आम कर दिए गए कुछ मजहबी रहनुमाओं की तरफ से कि आप हमारी मुठियाँ गर्म करते रहे और हम वहाँ जा कर आपकी सिफारिशें करते रहेंगे, इससे जिहाद कीजिए। ये अनपढ़ लोग होते हैं अमूमन देहातों में कच्ची बस्तियों में रहने वाले, इधर जाकर तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलालमीन लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान का तर्जमा सिखा दीजिए, सूरत अलनाम का तर्जमा सुना दीजिए, सूरत नहल का तर्जमा सिखा दीजिए, ये ख़त्म हो जाएगी जो हालत। क्योंकि पिसे हुए तबके कम पढ़े लिखे लोगों का सबसे बड़ा मसला ही शिर्क है। वो बाबों से निकलते ही नहीं, पीरों बुजुर्गों के अंदर ऐसा उनको उलझा दिया गया बेचारों को कि नमाजें भी पढ़ते हैं वो कुर्बानी नहीं करते, वो कहते हैं वो तो जाके कब्र पे की जाती है। आज आप इन पांचों को सुनिए और जाकर फिर अपना नाम लिखाइए कि आपने किधर करना है काम। अगर आप सिर्फ शिर्क को फोकस करें, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो मजहबन शिर्किया है, मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, नाम ले लेती हूँ, कोई अपने आप को एक के सिवा कई खुदाओं का पुजारी कहता है, कोई तीन खुदाओं का मानने वाला है, कोई दो का मानने वाला है, आप जाकर सिर्फ एक ही मौजू पे बात कीजिए और वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बरक्स एक दूसरी जाहिलियत है जिसको जाहिलियत जदीदा कहा गया, ये है इल्हाद और मादा परस्ती। ये मूमन पढ़े लिखे लोगों का और इंटेलेक्चुअल्स का और एंकर का मसला होता है। ये दीन की वो तफसीरें और ताबीरें पेश करते हैं जो कभी सुनी ना देखी ना कुछ, इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। यानी कह लीजिए कि दीन के नाम पर बेदीनी जो सारी पाबंदियों से आज़ाद करके आपको कहते हैं शरीयत के पट्टे गलों से उतार दो, दुपट्टे दुपट्टों की तो ज़रूरत नहीं, शरीयत के पट्टे जो पहने हुए हैं और नबी की मोहब्बत का पट्टा पहन लो तो फिर तुम्हें दुपट्टे की तो ज़रूरत नहीं। यानी ऐसी अजीब व गरीब बेकार बातें जो आज के दौर में आप देखिए कि क्या खूबसूरत तरीके से सजा सजा के पेश होती हैं। तीसरा बहुत बड़ा एक महासे बेयकीनी का, इसका शिकार है हमारी यूथ, हमारे वो बच्चे जो वेस्टर्न माहौल में पल रहे हैं। वो जब बाहर की दुनिया से इतना एग्रेशन देखते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें देखते हैं तो वो भी घर आके सवाल करते हैं कि मामा इज़ इट ट्रू, क्या मामा वाकई ऐसे ही है, अच्छा वैसे है। तो बेयकीनी ख़त्म करनी है अपनी नौजवान नस्ल से। और चौथा जिहाद आपने मैंने करना है नफ्स परस्ती और शैतानी तरगीबात के मुकाबले में। आज नफ्स इतना मोटा हुआ, पैदा होते ही बच्चे से उसकी पसंद और ख्वाहिश पूछ पूछ के जब उसको खिलाया पिलाया और पहनाया जाता है तो वक्त के साथ तो वो तो कम वेट गेन करता है, उसका नफ्स ज़्यादा वेट गेन करता है। हर ख्वाहिश तो उसकी माँ बाप ने पूरी करने की ठान ही ली है, नतीजा क्या निकलता है कि आज ख्वाहिशात के पीछे पड़ी हुई उम्मत है। इनको दिखाइए, शरीयत की खूबसूरतियाँ दिखानी पड़ेंगी, समरात दिखाइए, अपने अमल से अपने कौल से तबलीग करनी पड़ेगी। और याद रखिएगा जब कभी आप और मैं अमल में पीछे रह जाएंगे और हम भी उन्हीं ख्वाहिश परस्तियों में पढ़ के हराम हलाल के फ़र्क के बगैर दुनिया लेंगे तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है। वो देखिए ना फुलां भी तो है ना, वो भी तो दर्स देते हैं, वो भी तो मौलवी साहब हैं, वो इमाम साहब भी तो यही कहते हैं। इसमें लोगों ने सूद तक को हलाल कर लिया, इसके खिलाफ महाज है। और पांचवा जो बैग 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 प्लेटफॉर्म जिस पे आपको मुझे खपना है तपना है, वो फिरका वारियत का खात्मा है, इंतशार और बाखमी इख्तलाफात का महाज कि ये उम्मत बटी पड़ी है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे और हर एक का ये दावा होगा कि हम ही हक पे हैं, हालांकि एक नाजी और बाकी नारी होंगे। तो फिर का बारी है, तो आप कुरान पढ़ाएं लोग आपको वहाबी कहेंगे, आप कुरान पढ़ाइए लोग आपको एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, आपको पता नहीं क्या क्या नाम देंगे। इस बारे में भी एक लफ्ज़ आ रहा है जो फिरौन ने ताना दिया था, लशिर ज़िमा। ये छोटा सा एक बड़ा टेररिस्ट टाइप का ग्रुप है जो हमें गुस्सा दिला रहा है। ये फिरौन ने उस दौर की बनी इसराइल को कहा था आज आप कुरान पकड़िए, देखिए ज़रा लोग फिर आपकी ज़िंदगी कैसे अजीरन करते हैं, तो मेरा आपका फिर आज काम क्या है। अब आप ज़रा सा सोचिए, मैं चंद मिनट रिलैक्स करना चाहती हूँ आपको। कोई जज्बाती बात नहीं की मैंने, मैंने कोई गुस्से में बात नहीं की, ये वो बात है जिसके लिए मैंने 19 दिन सब्र किया कि इस बारे में ही आके करनी है। देखिए इस वक्त ये दौरे कुरान जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 19 साल से ये ऑफ़र हो रहा है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि आपको अपने इर्द गिर्द जो टीचर्स दिखते हैं, जो पहले आपको तजवीज़ सिखाते हैं, आपको अगर बड़े कोर्सेज में आप आएंगे तो आपको ग्रामर सिखाई जाएगी, और इसी तरह से आपके एडमिन्स अंसारुल्ला, जो इस वक्त भी आप देखिए कि शायद 100+ लोग हैं जो सिर्फ इस DQ को ओवरऑल मैनेज करते हैं, और जो इसकी साइट्स के हैं उनको तो हम जानते भी नहीं कि कौन अपनी जगहों पे क्या कुछ कर रहा है। ये सब कहाँ से आए? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी और तकदीस नेमत पे कहूँगी कि जितने हमारे एडमिन्स हैं इस वक्त भी, और जो जमे हुए ठुके हुए हैं, वो इस कुरान के सफ़र से गुजरे हुए लोग हैं। आप ऐसे लोग खरीद नहीं सकते, ऐसे लोगों को हायर नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये इसी कुरान के सफ़र के जिहाद में से निकले हुए लोग हैं, मेहनत की, मेहनत करके दिखाई, और मेहनत के समरे आज गली गली फूल रहे हैं। अक्सर लोग जब कोई नया स्टेशन, कोई नई चीज़ देखते हैं तो कहते हैं ये सब्र का बदला है, ये आपकी मेहनतें हैं, हमने आपको उधर उधर जाते भागते देखा है, हम आपको चार चार लोगों में भी पढ़ाते देखते। तो मैंने कहा मैं तो आज भी पढ़ाने को तैयार हूँ, मुझे तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो इतनी बड़ी ऑनर है कि मैं इसको किसी कीमत पे ना छोड़ूं कि मैं अपने रब का कलाम सीखूं और सिखाऊं। लेकिन ये बात समझ लीजिएगा कि जो कुरान से नहीं जुड़ा होता वो हर वक्त आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। कभी किसी ऐसे बंदे को अगर आपने इस काम में डाला, आपकी आंखों का पानी खुश्क हो जाए रो रो के, लेकिन बात नहीं समझ आती। और मैं आपको इस वक्त वो कहने लगी हूँ जो अल्लाह के नबी की हदीस है कि मोमिन वो है जो अपने मोमिन भाई के लिए वही पसंद करे जो उसको अपने लिए पसंद है। तो मुझे अपने लिए जो चीज़ पसंद है, आज इस आयत की मोहब्बत में और इस पारे की ऑनर में आपके साथ तहदीसे नेमत के तौर पे दिल की आजजी, नरमी और इक्कत के साथ शेयर करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल, पिछले सालों बल्कि हर साल की तरह स्पिरुल जन्ना 2020 का फ्लायर भी रेडी है। आज आपके लिए हम अपना अगले साल का वो कोर्स जो हर साल के दौरे कुरान के नतीजे में निकलता है, मिसाल देती हूँ कि शादी के बाद अमूमन 1 साल के बाद बच्चे होते हैं ना, इल्ला माशाल्लाह, नतीजे होते हैं ना, फिर औलाद से इंसान अपने आप को आगे लाता है। ये सबीलुल जन्ना का सफ़र जो इस वक्त आपके सामने रखा जा रहा है, ये दौरे कुरान के बाद अगर शुरू ना हो तो नतीजा क्या होता है? कि जो अभी दिल की मट्टी थोड़ी थोड़ी नरम हुई है, अभी आप सुन रहे हैं, आप अपनी अपनी जगहों पे सुन रहे हैं, मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि जिस हद तक देख सकूँ कि आप इस वक्त लॉकडाउन की वजह से घरों से सुन, हज़ारों नहीं, अब तो ये बात लाखों में चली गई, अल्लाह इसको करोड़ों और अरबों में डाल दे, इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। तो आप सबको दावत दूंगी कि आप सबीलुल जन्ना कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सबीलुल जन्ना क्या है? रोड टू जन्ना। इसमें सिर्फ कुरान नहीं सीखते आप, तजवीद है, दुआएं हैं, हिफ्ज़ है कुछ मखसूस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ये जान है इसकी। आज के पूरे पारे में जो बातें हो रही हैं ना, ये है वो चीज़ जो अभी दौरे कुरान में हम कर नहीं पाते ना, हो भी नहीं सकती। ये सबीलुल जन्ना में आपको मेन चीज़ सिखाई जाती है कि आप एक एक लफ्ज़ का तर्जमा सीखते हैं, आप और आपके बच्चे और आपकी बच्चियाँ सबको साथ रखिए, तो उसके बाद आपको बग़ैर उर्दू के कुरान के खोले आपको अरबी में कुरान समझ आता है। फिर इसमें तफहीमो सुन्ना, हदीस की वो चंद बेसिक बुक्स जो मेरी आपकी ज़ाती सलाह के लिए, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसमें आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, इत्तबाए सुन्नत, इन चीज़ों को देखते हैं। सीरा ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़र कराया जाता है आपको बेसिक लेवल का, ताकि आपको पता तो चले कि अल्लाह के नबी ने क्या कुर्बानियाँ दी। फिर इसी तरह टाइम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, मेरा घर मेरी जन्नत, ये भी इसका हिस्सा होता है। बच्चियों को स्किल सिखाई जाती हैं, लाइफ मैनेजमेंट थिंग्स होती हैं कि ज़िंदगी के तकाजे कैसे पूरे करने हैं, सब्र और शुक्र कैसे करना है। हर साल ये किसी डिफरेंट टाइम जोन से आता है, कोशिश पूरी की जाती है कि आप सबको मैनेज किया जाए। ये एक रजिस्टर्ड कोर्स होता है, फ़ायदा आप कोई भी उठा सकते हैं कहीं से, एवरीथिंग ओपन पड़ी हुई है, वेबसाइट्स पे, ऐप्स पे, और यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक है, बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे ही तो बीज नहीं फेंके जाते, अगर कुछ फसल काटनी है तो कुछ नाम तो चाहिए होंगे। तो ये एक रजिस्टर्ड कोर्स होता है, फिर आपको पूरी असिस्टेंस मिलती है, आपके लिए ग्रुप लीडर्स, ग्रुप एडमिन्स मुकरर होते हैं, आपका सबक सुना जाता है, आपके बड़े हल्के फुल्के से ऑनलाइन पे टेस्ट लिए जाते हैं जिससे हम चेक कर सकें कि हमने गलत तो नहीं पढ़ाया। दुआ करके, बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह से मदद मांग कर आपने इस काम का आगाज़ करना है कि मैंने इससे फ़ायदा उठाना है। हो सकता है आपने कभी पहले कुरान पाक पढ़ा हो, आपका ये सवाल है, बहुत सी बातें हैं, इंशाल्लाह हमारे साथी आपकी हेल्प करेंगे, आप इससे कैसा फ़ायदा उठाएं। आप में से कुछ लोग इस वक्त भी कहीं ना कहीं कुरान पढ़ चुके हैं, तो आइए बिस्मिल्लाह आप भी इसका हिस्सा बनिए। हर कोर्स के अंदर बेशुमार एडमिन्स की ज़रूरत होती है, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है और अल्लाह की रहमत से मैं उन सारे एडमिन्स के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि जो रात दिन काम करके आप लोगों के लिए ये तैयार करते हैं, ये है जाहिद हम भी जिहादन कबीरा। आज भी मैं उन लोगों को जानती हूँ कि जो अपनी बीमारियों से बेनियाज, अपने बच्चों से बेनियाज, ये नहीं कि जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो रही बल्कि उनके बच्चे उनके साथ लगे होते हैं, उनके शौहर उनके साथ लगे होते हैं, उनके घर वाले उनका साथ दे रहे हैं, फिर ये कुरान आप तक मेरे तक पहुँच रहा है। यही है असल में नूरुल कुरान। हम इससे ऊपर जाते नहीं। कोई नया बंदा पूछ सकता है आप किस फिक से ताल्लुक रखते हैं, किस ग्रुप से, तो मैं एक जुमले में जवाब देती हूँ, कुरान की कोई फिक नहीं। फिक तो जाती है आगे, इससे अगले स्टेप से, उसमें हम आपको नहीं लेके जाते, वो उलमा का काम है। हम सब तो तालिब इल्म हैं। इस कुरान की तलब जाग जाए, कुरान पढ़ते जाइए, हदीस की रोशनी में आपको खुद अपना मसलक समझ में आने लगेगा। अल्लामा इकबाल की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म है जो असल में फ़ारसी के बहुत सारे अल्फाज का मजमू है, जिसका मैं आपको उर्दू तर्जमा सुना कर मौजू को रोक कर आगे चलेंगे। दिल तो नहीं कर रहा इसको छोड़ने को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। कहते हैं कि ऐ वो शख्स जो हामिले कुरान अजीम होने पर फ़ख्र है, आखिर कब तक हुजरों और गोशों में दुबके रहोगे? उठो और दुनिया में दीन हक के असरारो रमूज और इरफानो फैज़ान को आम करो, और शरीयत इस्लामी के हुक्मों इबर की नशर इशात के लिए सरगर्म अमल हो जाओ। कुछ ना समझ आए तो कहिए वेकअप है मुस्लिम, जागो और जगाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, सुनो और सुनाओ। और यहाँ एक दूसरी खुशी भी आज आपके लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो जोहराबाद और उसके इर्द गिर्द में रहते हैं, हम सेम वक्त पे अपने ऑन साइट कोर्स जो एक साल में आपको इस कुरान के नूर को अपने दिल में लाने के काबिल बनाता है, उसका भी ऐलान करते हैं। आज जो हमारे साथी उन इलाकों से इर्द गिर्द बैठे सुन रहे हैं, और मैं उन ख़ास तौर पर उन टीचर्स को और उन स्टूडेंट्स को कहूँगी जो लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे इस साल दौरे कुरान सुन रहे हैं, तो आप वो कोर्स रजिस्टर्ड कीजिएगा जो आपको जोहराबाद से दिया जा रहा है। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब तक लॉकडाउन में आप घरों से सुन रहे हैं आप उनके साथ सुनिएगा, और इसके बाद फिर जब आपके हालात नॉर्मल होंगे तो ये इंशाल्लाह आपको अकोमोडेट करेंगे क्या करना है कैसे करना है। तो जो जोहराबाद से इर्द गिर्द के लोग हैं वो ऑनलाइन कोर्स बीरुल जन्ना की बजाय वो लिंक फॉलो करेंगे जो आपके लोकल ग्रुप्स में दिया जाएगा, और अपनी बच्चियों को वहाँ बुला कर बिठा कर सिखाने की नीयत करेंगे। और याद रखिए कि इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं है। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इन सारी चीज़ों को आसान कर दे। अब आगे चलिए कि जब आप ये कोर्स करते हैं, दिल में एक सवाल आता है कि हम ये कोर्स क्यों करें? बच्चियों ने फ्रीज लिया एक साल और कोर्स किया, आप भी एक साल का गैप ले लीजिए, कोई पता नहीं अल्लाह ने ये लॉकडाउन कब तक रखना है। नियत कीजिए इसको कुरान का साल बनाइए। इसी तरह पाकिस्तान में हमारा डिफरेंट लोकेशंस पे भी ये कोर्स शुरू होने वाला है, तो आप सब ने इससे अपने अपने इलाकों में फ़ायदा उठाना है। अगली आयतें आपको बताएंगी कि ये आपको ज़िंदगी की तलखियों और गर्मियों और नरमियों में जीना सिखाएंगी, क्योंकि अब आगे ससुराल का जिक्र आने लगा है। तो भी बता दूँ कि जब आप कुरान का कोर्स करते हैं, वो बच्चियां जो शादी से पहले ये कोर्सेज कर लेती हैं और उसकी रूह को लेती हैं, यकीन करें उनके माँ बाप बहुत बुरे तजुर्बात से बच जाते हैं। और फिर आप ज़िंदगी के हर किस्म के हालात में इस किताब की रोशनी में जीना सीखते हैं। इसीलिए देखिएगा आयत नंबर 54, उससे आगे, वहुवल्लज़ी खलक मिनल माई बशरा, वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। बिलाशुबाह का परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है। लोग कहते हैं ससुराल का जिक्र कुरान में भी है, हमने नहीं पढ़ना, इतना लोग ससुराली से डरते हैं। हालांकि आप देखिए कि ससुराल ना होते तो आज आप किसी की बेगम कैसे बनती और कोई आपकी भाभी कैसे बनती? तो अल्लाह ताला ने खूबसूरत रिश्तों के नाम ले दिए। बिलाशुबाह का परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है। तो ससुराल में रहकर भी कुरान का कोर्स आप करेंगे, अगर किसी का ये सवाल है। आप बहू हैं, आप बेटी हैं, आप सास हैं, आप माँ हैं, मिलकर कीजिए। देखिए बेहतरीन तबलीग वो होती है जो घर वालों को साथ लेकर की जाए। और ठीक है कभी मीठे हालात कभी खारी हालात आगे पीछे बातें आ रही हैं, तो हम ससुराल को उलुल कुर्बा में अगर समझेंगे तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। आप वो बच्चियाँ अपने घरों में लाइए जो कुरान सीखी हुई हैं, और आप उन औरतों को अपने बच्चे दीजिए, बेटियाँ दीजिए जो कुरान से जुड़ी हुई हैं। नसीब की बात है, लेकिन अमूमन ऐसे लोग जो कुरान से जुड़े होते हैं वो अच्छी बहुएँ और अच्छी सासें साबित होती हैं। वो बच्चे जो कुरान से जुड़े होते हैं वो अच्छे दामाद बनते हैं, और ऐसे घरों में बच्चियों की कदर होती है। हमने आज जो कल्चर लिया वो गानों और फिल्मों से लिया। ससुराल तो हमारे लिए वैसे ही है इसराइली और पता नहीं क्या कुछ लोगों ने जोक्स बना दिए। शादी के गानों में सास को और नंदों को एक बड़ी ही नागवार चीज़ बनाकर पेश किया जाता है। ये कुरान आपको सिखाएगा, आपकी बच्चियों को सिखाएगा कि ससुराल होता क्या। लोग कहते हैं कि आप खिदमत करें, हमने सुना है जी बहू का तो कोई जिम्मा ही नहीं है, और सास और ससुर के तो हकूक नहीं होते, ज़रा से सोचिए। आप देखिए कि वो दीन जो के हमसायों का ख्याल करवाए, पड़ोसियों का ख्याल कराए, क्या साथ वाले कमरे में मौजूद सास का ख्याल नहीं रखना सिखाएगा? ये कुरान आपकी बेटियों को ऐसा खूबसूरत बनाएगा कि वो दिलों को फतह करना सीखेंगी। सॉफ्ट स्किल सिखाता है ये कुरान। आज हम पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूमते हैं, एक्सट्रीम पे रहते हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर। अक्सर तो सासों को भी अपनी इज्जत नहीं करानी आती कि वह बूढ़े उम्र में भी अपने आप को जवान समझती हैं। बहू लेने आएंगी तो कहेंगी इतनी दुबली पतली हो कि बस देखने में अच्छी लगे, लेकिन काम करे वो 40 साल की औरत अला। उम्र हो उसकी 16 साल की, मामला फहमी हो उसकी 50 साल की औरत की, तो ये गैर हकीकी बातें हैं। कुरान आपको मुझे हकीकत में रियलिस्टिक बनाता है, और अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि हम हर रिश्ते में सुरखरू हो जाएं। कल क़्यामत के दिन अगर ससुराल के मामलात में पकड़े गए तो क्या होगा? पिछले साल यही पारा था रिश्तों को जोड़ने वालों में, कि उसी दिन शाम को एक सिस्टर आई और उन्होंने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की। सारी बात का खुलासा मैंने कहा दौरे कुरान में छुट्टी का क्या जवाज़ है? कहने लगी मैंने ससुराल के बारे में आज सुना, और आप सुन लीजिए 19वां पारा, बहुत कुछ ससुराली ताल्लुक पे बात हुई। वो अपने शौहर के साथ कितने घंटे का सफ़र करके गई, 2 दिन रहीं। कहती पिछले जितने साल से शादी हुई थी ससुराल से कटे हुए थे, नाराज़गियाँ चल रही थी, सिर्फ इस पारे में से ये आयत ने उनको माइल किया, और उन्होंने कहा मैं अगला पारा सुन नहीं सकती जब तक मैं अपने ससुराल वालों को आगे ना ले चलूं, और जाकर सुलह सफाई की और अब खुशियों से ज़िंदगी गुजर रही है। तो याद रखिए कि कटने छटने की बजाय इस किताब की रोशनी में लीजिए, हर रिश्ते को पढ़ना आता है। ये कुरान आपकी बेटियों को गाइड करेगा। आप तो साथ नहीं जाएंगी ना, माँ कैसे सारा दिन, और जो बच्ची सारा दिन फ़ोन पर रहेगी बताइए कि वो ससुराल में किस तरह जिएगी और कैसे पनपेगी? तो अपने नंबर्स ना दीजिए अपनी बच्चियों को, कुरान के नंबर्स दीजिए। तो ख़ास तौर पे आपने यंग बच्चियों और उनको लेकर भी इन कोर्सेज से फ़ायदा उठाना है, ताकि आप माँ बेटियों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ भी अच्छा हो, और फिर एक दूसरे का दुख दर्द भी समझता, और मोहब्बत भी ऐसी होती है। हमारी कई क्लासेज उसमें सास भी आती है, बहू भी आती है। वो कहते हैं सारी ज़िंदगी वो मोहब्बत ना हमारे अंदर हुई जो अब हो चुकी है। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि अगर आप अपनी बहुओं की थोड़ी सी मदद कर दें, बच्चों को मैं संभाल लूँगी, बेटा तुम कोर्स कर लो, अच्छा मैं ऐसे बैठ जाऊँगी, तुम पढ़ लो, तुम लिख लो, फ़ायदा क्या होगा? आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। अमूमन बेटियों ने माओं की जवानी देखी होती है, जबकि बहुएं बूढ़ी सासों को बर्दाश्त करती हैं, और ये बर्दाश्त कुरान सिखाता है। और इस तरीके से आप इस चीज़ को लेकर देखेंगे कि ये कुरान आपकी ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ भर देगा। बिलाशुबा आपका परवरदिगार हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला हमारे घरों में सुकून और खुशियाँ ता फरमा दे। लेकिन लोगों को अक्सर ये बातें सजती नहीं, जचती नहीं। क्या करते हैं वह याबुदून मिंदूनिल्लाही मा ला यन्फउहुम वला यदुर्रुहुम, ये अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करते हैं जो ना तो इनको कोई नफ़ा दे सके ना कोई नुकसान पहुंचा सके, और काफिर तो है ही अपने रब के ख़िलाफ़ शैतान की मदद करने वाला। यानी लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों को पूजने लगते हैं। आज भी देखिए कि हम ऐसी तालीमात अपने बच्चों को कई कई साल दिलाते हैं जिससे बाद में फ़ायदा भी नहीं लोग उठाते। क्यों इसलिए नहीं उठाते कि अब ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं, जॉब नहीं करेंगे। तो क्या ये कुरान जो एक आपके लिए मेरे लिए लाजमी चीज़ है उस पर हम थोड़ी सी मेहनत भी नहीं करेंगे? ये कुरान तो खुशखबरियाँ देता है जैसे कि अल्लाह के नबी देते थे। फरमाया आयत 56, हमने तो आपको खुशखबरी और डर सुनाने वाला नबी बनाकर भेजा है, कह दीजिए कि मैं कुरान के पहुँचाने पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे। जहनों में उठने वाले शायद इस सवाल का जवाब है इसमें कि क्या इसकी कोई फीस होती है, क्या ये फ्री कोर्स हैं? तो इसका जवाब आयत 57 से ले लीजिए, आपका कोई टीचर एक पैनी नहीं लेता। अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डिसिप्लिन के लिए कुछ फ़ीस रखी जाती है तो वो एक तो इसलिए कि लोगों से मांगना ना पड़े। इस वक्त आप देखिए जितने मीडियम्स पर ये दौरे कुरान आ रहा है ये पानी से तो नहीं चल रहा ना, एक एक मीडियम पर कितना पैसा लगता होगा आपको अंदाज़ा हो रहा है? एक एक स्लाइड आप तक पहुंचने में कितने सिस्टम से गुजरती होगी? तो खर्च तो होता है ना। तो एक तो ये कि हम लोगों से मांग लें, और हम लोगों की ज़कात और खैरात पैसे पड़े वो भी हक है। बहुत सारे लोग देही इलाकों में और इधर उधर, और हर कोर्स के अंदर ऐसी सहूलतें मौजूद होती हैं जो नहीं दे सकते वो ना दें। इतनी मामूली नॉमिनल फ़ीस होती है कि जिसको फ़ीस कहना भी शर्मिंदगी है, तो वो पढ़ाने की फ़ीस नहीं होती, वो सिर्फ इंतज़ामी चीज़ों की फ़ीस होती है। आप किसी इदारे में जाकर बैठे हैं, उसका किराया है, उसकी बिजली है, अब ये कहाँ से होगा? आज इसको भी सोचने की ज़रूरत है कि हम जितने शौक़ से शादियों पे खर्च करते हैं, अगर इतने शौक़ से हम दीन के इदारों पे खर्च करने लग जाएं तो हमारे दीन के पौधे पे बहार आएगी इंशाल्लाह ताला। इस हमेशा ज़िंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर तवक्कुल कीजिए, जिसे कभी मौत नहीं, और इसकी तारीफ़ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहें। वो अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान की सब चीज़ों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो रहमान है, आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लें। अगर आपको अल्लाह का मुकाम नहीं पता तो किसी जानने वालों से पूछ लीजिए। इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो जवाब देते हैं, रहमान ये है क्या? देखिए, लफ्ज़ रहमान से बिल्कुल चिढ़ खाते थे मक्का वाले, उसी फीलिंग्स को यहाँ रखा गया। क्या हम इसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म दे रहा है? और इस तबलीग ने इनकी नफरत में मजीद इजाफा कर दिया। यानी कुछ तो इन बातों को सुनकर खुश हो रहे होते हैं और कुछ पेचोताव खा रहे होते हैं। क्या मुश्किल है, अब एक नई चीज़ सामने आ रही है, अब हम क्या करें, किस किस में जाएं, और ना करें तो गिल्ट है। तो याद रखिए कि कोई काम करें ना करें, उसको देख कर खुश हो जाएं, अल्लाह ताला उस पर भी राज़ी होगा। और आगे आप देखिए कि किस तरीके से कायनात में फैली हुई चीज़ों को मिसाल देकर बताया कि तुम इस ज़मीन पर हिदायत के सितारे बनना चाहते हो तो तुम्हें इस किताब के नूर से फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तबारक अल्लसी, बबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाया और इसमें आफ्ताब बनाया और मुनव्वर महताब भी, और इसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। इस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। है हमारा इरादा? तब आगे इबादुर्रहमान बनने की नियतें कीजिए। पूरा एंड तक ये एक टॉपिक चलेगा। अल्लाह ताला ने इसमें एक खूबसूरत किरदार हमारे सामने रखा है। बेहतर है कि पूरा इकट्ठा पढ़ लूँ और इस पर फिर हम जहाँ जहाँ बात कर सके करेंगे। इबादुर्रहमान वइबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर मसलहत के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम है, और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं, और जो ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख़ का अज़ाब परे ही रखिएगा, क्योंकि इसका अज़ाब तो चिमट जाने वाला है, बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। और जो खर्च करते वक्त भी इसराफ करते हैं, ना बखीली बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदिल यानी बैलेंस तरीके पर खर्च करते हैं, और अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ताला ने मना कर दिया हो, बावजूद हक के कत्ल नहीं करते, ना वो जिना के मुर्तकिब होते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त बबाल लाएगा, इसे क़यामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा और जिल्लत व ख्वारी के साथ हमेशा इसी में रहेगा, सिवाय इन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें। ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है। और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अल्लाह की तरफ सच्चा रजू करता है। और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते और जब किसी लफ चीज़ पर इनका गुजर होता है तो शराफत से गुजर जाते हैं, और जब इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर इस पर नहीं गिरते। इसको हाईलाइट कर ले, बारे का थीम है। यानी आयतें ऐसे नहीं सुनते कि जैसे बहरा सुने जिसको समझ ही ना आए। और ये दुआ करते हैं कि अवल्लज़ीना यकूलूना रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना अज़्वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता युनिम वजालना लिल्मुत्तकीना इमामा। ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बनवा। अल्लाह अकबर। कुरान की तिलावत सुनते वक्त की मुख्तलिफ कैफियात का तस्करा है इधर। आप देखिए, कुरान की तिलावत तो एक ही है, सुनने वाला या तो निफाक की कैफियत में है या ईमान की कैफियत में। एक को आप मुनाफिक कहेंगे, एक को मोमिन कहेंगे। मुनाफिक पर कुरान की आयतों का क्या असर होता है? वो हक बात के लिए अपने कान बंद कर लेता, आंखें अंधी बना लेता है, इसलिए कि इन आयतों से उसको कोई फ़ायदा नहीं उठाना। इसके बरक्स मोमिन की कैफियत आखरत और हशर के दिन को याद करते हैं और कुराने करीम को गफलत से नहीं सुनते। तो याद रखिएगा कि कुराने पाक को समझने के लिए कुछ असूल है। आप चाहते हैं आपको कुरान का फहम हासिल हो तो नंबर एक, नियत को पाक कीजिए। कुराने मजीद की अजमत और अहमियत से वाकफियत हासिल करना है, ज़ाहिर व बातिन को बदलने का मजबूत इरादा करना है, इस पे तदब्बुर की कोशिश करनी है, और फिर अपने मामले अल्लाह के सपुर्द करने हैं। यानी तफवीज़ इलल्लाह, तफवीज़ इलल्लाह क्या है? उफविज़ अम्र इलल्लाह, जैसे हज़रत याकूब का कॉल पीछे सुन चुके। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे, कुरान का फहम दिलों में आएगा। फिर आप देखिए कि अब यहाँ इबादुर्रहमान की जो खूबियाँ 63 से ऑनवर्ड देखी हैं, ज़रा सा इसका खुलासा करके फिर हम आगे चलेंगे। पहली चीज़ है तवाज़ु और इनकसारी होती है, इनका चाल चलन बहुत अच्छा होता है। हमारे कल्चर में करेक्टर को क्या कहते थे, फलां का चाल चलन अच्छा नहीं, बहुत अरसा तक यही टर्म हमारे कल्चर में चलती गई और लोग लड़के की चाल चलन के बारे में बहुत केयरफुल होते थे। आज तो लोग खुद ही अपने करेक्टर्स फेसबुक्स के थ्रू आपको घर बैठे दिखा देते हैं, उनके प्रोफाइल्स की तस्वीरें बता देते हैं, ये बच्चियाँ कैसी हैं और ये बच्चे कैसे हैं, घर बैठे आप देखेंगे। लेकिन हकीकत है कि मोमिन की चाल चलन, उसका रवैया, उसका लोगों से बात करना, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया दिखाता है कि वो किस दर्जे का बंदा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बहस नहीं करते, ऐसी बच्चियाँ जो वाकई कुरान से गुजर जाती हैं ना, वो फिर बहसों में नहीं पड़ती। फिर इसी तरह अजाब जहन्नुम से बचाओ की दुआएं करते हैं, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, कभी धोखा नहीं खाएंगे आप अगर अपनी बेटी के लिए कोई रहमान का बंदा ढूंढेंगे। आप कुछ और चीज़ें देखते हैं, बाद में पता चलता है शादी के बाद कि वो तो शराब पीता और इसी तरह की कबाखतों में है। मत कीजिए ऐसे रिश्ते अपनी अच्छी बच्चियों के बाद में उनको रोना पड़े। फिर इसी तरह आप देखिए खराजात में मियाना रवि होती है, पेंडुलम की तरह इधर से उधर नहीं जाते भागते। और याद रखिए जो ये सब करेंगे उनके लिए फरमाया उलाइका युजज़ौन अल-ग़ुरफ़ा बिमा सबरू, यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंदो बाला खाने दिए जाएंगे, जहाँ इन्हें दुआ सलाम पहुँचाया जाएगा, इसमें ये हमेशा रहेंगे और वो बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआ यानी इल्तजा करना पुकारना न होता तो मेरा रब तुम्हारी मुतलिक परवाह न करता, तुम तो झुटला चुके अबन करीब, इसकी सजा तुम्हें चिमट जाने वाली ही होगी। तो किस खूबसूरत पैगाम के साथ सूरत अल फुरकान पूरी होती है। देखिए फुरकान क्या है, हक और बातिल का फ़र्क। हमने शुरू में बात की थी कि नूर के बाद जब फुरकान आ जाता है तो ज़िंदगी में अमल आसान हो जाता है। और इबादुर्रहमान ये बेस्ट लेवल है, जिसका पीछे भी तذکرہ किया था कि अगर किरदार की बुलंदी चाहते हो तो इबादुर्रहमान की सिफात देख लो। इबादुल्ला भी नहीं कहा, रहमान, रहम से जोड़ा। ये वो लोग हैं जो नरम चाल चलते हैं, आराम से रहने वाले होते हैं, ईजी गोइंग लोग होते हैं, हॉर्नन अग्रेसिव नहीं होते, ओप्रेसिव नहीं होते, पैसिव रहते हैं, खुद को एक स्टेप पीछे रखते हैं, डाउन टू अर्थ, अपनी ज़ात को नुमाया नहीं करते, हर जगह आगे आगे नहीं होना चाहते। और जब कोई जाहिल इनसे आके ज़रा बहस करना चाहे तो आगे से खामोश हो जाते हैं। जाहिल कौन होता है, जिसका जिक्र है कि ये लोग जाहिलों से वैज़ा ख़ातबहुम अल-जाहिलून क़ालू सलामा। तो याद रखिए इमोशनल जाहिल होता है, अग्रेसिव जाहिल होता है, और जो जज्बात पे काबू ना पाए और गुस्से में अपने आप को ही नुकसान दे दे वो जाहिल होता है। तो जाहिलों के मुंह नहीं लगते। फिर आप देखिए कि जहन्नुम का फिक्र इतना लग जाता है इबादुर्रहमान को कि रब्बना सरिफन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐसा किरदार तब बनता है जब अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होता है। हसन बसरी कहा करते थे कि एक दौर था कि लोग नेकी करके इतना डरते थे जितना तुम आज गुनाह करके नहीं डरते। और अगर हसन बसरी ये पिछले 5 साल में पैदा हुए होते तो जो आज के दौर में अपनी बुराइयों को एक्सपोज करने और सोशल मीडिया पे डालने का रिवाज आ गया, इस पे तो न जाने वो क्या कुछ कह देते। और फिर आप देखिए कि इसमें आखिर में तौबा की भी बात है, कि हो सकता है कि ऐसी बातें सुनने वालों से ज़िंदगी में कोई गुनाह हो गया हो, तो कोई बात नहीं, तौबा का दरवाज़ा तो खुला है। और तौबा सिर्फ लिप सर्विस का नाम नहीं, ये हाथ और पाँव का अमल है। जब एक इंसान गलत काम करता है, फिर आप देखिए कबीरा की बात होती है, कबायर का जब बंदा शिकार हो जाता है, 3 बड़े गुनाह इधर कत्ल, जिना और इसी तरह से अल्लाह के साथ शिर्क, इतने बड़े गुनाह भी किए हों कि जिसके बाद कहते हैं कि ईमान चिड़िया की तरह ऊपर जाकर मंडलाने लगता है, इंसान के जिस्म से ईमान चला जाता है जब वो कबीरा गुनाह करता है। लेकिन अल्लाह ताला उनको फिर तौबा के पानी से पाक करके दोबारा अपने करीब ले आता है। सोचिए तो सही, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह को आपकी तौबा पे आप पे प्यार आ गया, आपकी कोई एक कुर्बानी अल्लाह को अच्छी लग गई, आपका कोई अच्छा फैसला आपकी अगली ज़िंदगी बदल सकता है। फिर आप देखिए ला यशखदून नज़ूर की बात हुई, गलत जगहों में नहीं बैठते, गलत महफिलों का हिस्सा नहीं बनते, गलत झूठा लिटरेचर नहीं पढ़ते, और जो सबसे प्यारी चीज़ है वो दुआ है। यहाँ देखिए कि ये नहीं कहा गया कि रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व औलादिना, अक्सर तो औलाद ही लफ्ज़ आते हैं ना, अरबी का लफ्ज़ है, तो औलाद का लफ्ज़ क्या, आपके सामने की औलाद जो आपके बच्चे हैं, ज़ुर्रियातिना कहते हैं नस्लों को, लीनियज प्रोगजेनी शजरा, यानी अच्छे लोग इबादुर्रहमान सिर्फ अपने मौजूद बच्चों के लिए दुआएं नहीं करते बल्कि आने वाली नस्लों के लिए दुआएं करते हैं। आप भी मांग लीजिए, अल्लाह मेरी नस्लों को कुरान से जोड़ दे। اے اللہ میری نسلیں صدقہ جاریہ والا بن جائیں، حامل قرآن ہوں، شریعت کی پابند ہوں، اے اللہ میری نسلوں کو تو اس طرح اس کتاب کے خادم بنا۔ آج دعائیں کیجئے، ہماری نانیاں دادیاں تو دعائیں دے دے کے چلی گئیں، اور نہیں پتہ آپ کو مجھے ہم کس کی دعا سے یہاں بیٹھے ہیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، آپ کی یہ دعا ہے، ذرا سوچ کے بولیے، بہت پڑھی جاتی ہے دعا، لیکن یہ بات نہ بھولیے گا کہ متقین کا امام بننے کے لیے پھر آپ کو تقویٰ میں آگے جانا ہوگا، بالکل ایسے جیسے کسی کمپنی کا ڈائریکٹر، پرنسپل یا فوج کا جرنیل باقی ٹیم سے زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے۔ متقیوں کا امام بننے کے لیے آپ کو بھی تو متقی ہونا پڑے گا نا۔ یاد کیجئے، آپ اپنے اوپر لیجئے قرآن کے بعد جو دل میں تقویٰ آ رہا ہے، یہ پہلے تھا تو ساری بات کا خلاصہ جس پہ یہ سورت پوری ہوتی ہے کہ آپ کو مجھے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے جتن کرنے پڑیں گے۔ اپنے نفس کو بہلائیے، پچھلے 10 قسم کی باتیں دل میں ڈالے گا، اندیشے ہیں صرف، اعوذ باللہ پڑھ کے پھونک ماریے اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر لیں۔ بچہ دودھ نہیں پیتا تو ماں گیو اپ کرتی ہے، کبھی ملک شیک بنائے گی، کبھی آئس کریم کھلائے گی، کبھی شیکس اور پتہ نہیں کیا کچھ دودھ چلا جائے میرے بچے کے اندر۔ بچہ ذرا سا کھانا نہ کھائے کہتی ہے نظر لگ گئی۔ کبھی آپ نے یہ کہا کہ میرے بچے کو نظر لگی ہوئی ہے جو یہ قرآن نہیں پڑھتا، اس کو نظر لگی ہوئی ہے حدیث کی طرف نہیں آتا؟ تو جتنا زیادہ دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر چلیں گے اور اس کتاب کو ان کی زندگی میں ڈال دیں، کہہ لیجئے کہ آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اور آپ ہو نہ ہو، یہ ضروریات کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کی دعائیں آپ کی نسلوں کو لگیں گی۔ جیسے بی بی مریم کی ماں نے عیسیٰ کے لیے دعا کی، ہمیں نہیں پتہ عیسیٰ کی پیدائش کے وقت پہ وہ نانی تھی بھی کہ نہیں، لیکن ان کی دعائیں لگ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں کرتے تو نہ کرو، ماں یا بہو بھی کو نہ مانگو دعائیں، میرا کیا جاتا ہے، میرے تو بہت سارے ہیں، تمہارا کوئی نہیں میرے سوا۔ تو ہدایت کا نقطۂ آغاز دعا ہے، اور اس کے قبول ہونے کا اظہار عمل ہے۔ اگر آپ کی میری آج کے بد عمل کی طرف دوڑ بھاگ بھر گئی تو مان لیجئے کہ آپ کی دعائیں یا آپ کے بڑوں کی دعائیں آپ کو لگ گئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں لینے اور دینے والا بنائے۔ لوگ کہتے دعا کیجئے گا، میں کہتی ہے دعا لیجئے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کروٹوں کی دعائیں لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دل کی اندر کی تہوں سے دعائیں نکلتی ہیں، اور کچھ کے لیے تو بس ایک ہی دعا نکل دی ہے کہ اللہ اب ان کو ہدایت پہ رکھے، ہدایت پہ آنے کے بعد ان کو گمراہ نہ کر دے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا آسان کر دے۔ آگے ہے سورت شعرا، شاعر کی جمع شعرا، اور اللہ کے نبیوں پر جو الزام لگتا تھا اس میں سے ایک الزام شاعر ہونے کا الزام بھی تھا۔ رسولوں کا پیغام کیا تھا اور ان کو اس پہ کیا رد عمل ملا، یہ ہے سورت شعرا کا پیغام، اور بہت ہی خوبصورت سورہ۔ عام طور پہ تو اس میں بھی انبیاء کرام کے قصے ہی ہیں، لیکن ہر قصے کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تک جان نہیں ماریں گے اللہ کا پیغام عام نہیں ہوگا۔ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ کر کوچس میں بیٹھ کے کرنے کا کام نہیں۔ بعض لوگ کہتے دیکھیں گھر سے کریں، کتنا سہولت والا کام ہے، کر لیتے ہیں، بس اب کیا کرنی ہے، آن سائٹ چیزیں چھوڑ دیجئے۔ تو جواب پھر یہی ہے کہ وہ سبھی کچھ آن لائن پہ ہی کریں تو مان لیتے ہیں، پھر اگر باقی چیزوں کے لیے گھروں سے نکلنا ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں نکلنا۔ تو دعا کیجئے کہ گھروں کے کمفرٹ زون میں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جد و جہد کے ساتھ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کے طور پہ بھی کریں گے۔ سورت شعرا ترتیب کے اعتبار سے 26 سورت ہے اور 227 آیتیں، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ سورت شعرا ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے شروع ہوتی ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں قرآن پاک کا تذکرہ کہاں کہاں آتا ہے۔ جو ہمارا مین تھیم ہے اس بارے کا، پہلی 5 آیات قرآن پاک پر ایمان نہ لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب، آیت 192-198 قرآن مجید کا مکمل تعارف، اور 210 اس بات کا یقین دلایا کہ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے بلکہ جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں اللہ کے حکم سے۔ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ یہ کلام کسی شاعر کا ہے، تو اس صورت میں اس کا جواب دیا گیا کہ اس پاک کلام کا کہانت اور شاعری سے کوئی تعلق نہیں، قرآن پاک کے معجزے کو نہیں مانتے ہیں تو کسی اور معجزے کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہاں یہی بات کہہ دی گئی کہ یہ تو نہیں مانیں گے، لیکن اے نبی ذرا آپ اپنا خیال تو کیجئے، کیسے؟ تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین۔ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، नोट कीजिएगा, ये कुरान आपको रोशन ख्याल बनाएगा, ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। आज भी लॉकडाउन में आप खुशियाँ मनाएंगे अगर ये किताब आपके हाथ में और आप इसको बैठकर पढ़े और समझें। इनके ईमान न लाने पर शायद आप तो अपनी जान ही खो देंगे। बखा, बाखे बखा से ज़िबा करना। आज आप देखिए कि हमें आज अपने सामने वाली औलाद की इतनी फिक्र नहीं है जितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी मेरी फिक्र थी। आज मैं और आप कितने साल के बाद किताब पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी हुई आपके मेरे लिए। जब तक हमारी फिक्र ये नहीं होगी कि लोग ईमान ले आए, तब तक याद रखिए हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ नहीं आएंगी। और ये किताब मुबीन है, क्लैरिटी के साथ बात करती है। हमें भी अपने अंदाज में बिल्कुल क्लैरिटी लानी चाहिए, ना लोच ना हैंकी पैंकी और ना इधर से लटका लटकियाँ और मुबहम बातें। तो पांच खूबियाँ हैं कुरान की, अगर आप इसको किताब मुबीन समझते हैं। पहली बात यह कि ये किताब अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है, इसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। इसका किताब इलाही होना ज़ाहिर है कि अल्लाह की तरफ से उतरी है, हक और बातिल की पहचान करवाती है। फिर आपको ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछने पड़ेंगे दीनदारों से, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर इसमें कोई वहम नहीं है, शुबा नहीं है, मुफहम बातें नहीं है, और कुरान पाक की हर सूरत अपनी ज़ात में जामे सूरत है। इसी तरह आप देखिए कि सूरत में भी चूंकि कुरान का बहुत तज़किरा है, तो कुछ नाम कुरान पाक के नोट कीजिए, जिसमें से एक अल मुबीन आपके सामने भी है। इसका नाम बुरहान भी है, अल कुरान भी है, अल किताब भी है, अल फुरकान भी है, अल जिक्र भी है, अल तंजील भी है, अल हक और अहसनुल हदीस। और अभी जो कोर्स अनाउंस किया इसके शुरू के इंट्रोडक्टरी सेशंस में हम कुछ टिप्स देते हैं, उसमें इंशाल्लाह आप कुरान से मुतल्लिक बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि उसके साथ ही हमें कितनी नई बातें पता चलती है। मसलन लफ सूरत क्या है, हमें नहीं पता। रुकू क्या है, हाँ वो रुकू है। और मक्की सूरतें क्या है, मदनी क्या है, ये सब कुछ इंशाल्लाह आप देखेंगे। चंद अहादीस इस मोहब्बत में सुन लीजिए, कुरान पाक की फजीलत अहादीस की रोशनी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। सही मुस्लिम 1874। दुआ करिए मुझे कुरान की सिफारिश नसीब हो जाए। फिर बुखारी की रिवायत है 1919, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान पढ़ा और इसको पढ़ाया। पूछिए अपने आप से, क्या मैं सबसे बेहतर बनना चाहती हूँ? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा। काबिल रश्क लोग बस दो ही हैं, और आप में दोनों में शामिल हो जाएं तो फिर देखिए क्या होता है। बेशक वो आदमी जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा नहीं, वो वीरान घर की तरह है। तिर्मिजी की रिवायत है 2193। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान मजीद का माहिर यानी एक्सपर्ट मुअज्ज़ज़ और मोहतरम फरिश्तों और मुअज़्ज़म और मुकर्रम अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा। और वो शख्स जो कुरान पढ़ता हो लेकिन इसमें अटकता हो और पढ़ना इस पर मुश्किल हो, यानी कुन ज़हन है, मोटी ज़ुबान है, एक्सेंट ठीक नहीं, इसके लिए भी दुगना अजर है। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ताला आपको मुझे इस कुरान के लिए मेहनत करने वाला बना दे और हम सीखें ताकि दूसरों को सिखा सकें। आज हमारी फिक्रें कुछ और हैं, अल्लाह के नबी की फिक्रें कुछ और हैं। कभी सोचिए कि अगर हमने आज कुरान ना पकड़ा तो हमारे आने वाली नस्लें इस्लाम पे रहेंगी। हमने डूबतों को सहारा देना है, हाथ दीजिए अपनी नस्लों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर बैठे, वरना क्या होगा कि उनको बुराई के समंदर से बचाते हुए कहीं हम भी उनके साथ छलांग न लगाने लगे। और ये कुरान इतने गैर महसूस तरीके से आपकी मेरी इस्लाह करता है कि हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे किरदार में क्या खूबसूरत चीज़ें आ चुकी होती हैं। फिर इसी तरह फरमाया, और अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती, और इनके बस रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई है इससे रूगरदानी करने वाले बन गए। क्या पता चला कि ये कुरान अकड़ी हुई गर्दनों को झुकाता है। इन लोगों ने झुटलाया है, अब इनके पास जल्दी से इसकी खबरें आ जाएंगी। जिसके साथ वो मसखरापन कर रहे हैं, क्या उन्होंने ज़मीन पर नज़रें नहीं डाली कि हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े किस कदर उगाए हैं? ज़रा सा बाहर उगा हुआ सब्ज़ा तो देखिए, अगर आपके इर्द गिर्द हो, कैसे जड़ों के ऊपर ये उगता है और आपको मुझे एहसास भी नहीं होता कि यह आता कहाँ से। और बेशक इसमें यकीनन निशानी है, और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं हैं, और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है। और जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि तू जालिम कौम के पास जा, क्या जुल्म था उनका? शिर्क और अल्लाह से दूरी। कौम फिरौन के पास क्या वो परहेजगारी ना करेंगे? موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، بس تو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیج، اور ان کا مجھ پر ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مراد ہے قتل کا الزام، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں، بشری تقاضے سے ڈر بھی ہے، اور دبے دبے لفظوں میں کہہ یہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں جانا فرعون کے پاس، لیکن پھر بھی گئے۔ بس دفعہ آپ کو کیسی ذمہ داری ملتی ہے جو آپ کے خیال میں آپ کو پسند نہیں ہے، قبول کر لیجئے، اللہ کو آپ کے ہڈن ٹیلنٹ کا پتہ ہوتا ہے، وہ آپ سے وہ کام کرا لے گا جو آج آپ کو آفر کیا جا رہا ہے، اور آپ صرف اندیشوں میں اور شیطان کے وسوسوں میں آ کے اس کے لیے اوکے نہیں کرتے۔ تو ہمت والے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی ہی ہمت عطا کرے کہ ہم کبھی بھی اس دین کے کسی کام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جائیے، اور جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی جاؤ، وقت فرعون کے سامنے بھی پیش ہونا ہو تو تسلی رکھو کہ اللہ اس سے بڑی ہستی تمہارے ساتھ ہے۔ تو آپ کو بھی کسی کو اگر مشکل لگے، نہیں میں کر نہیں سکتی، دل تو بڑا چاہتا ہے ابھی حالات نہیں، تو یہ شاید آپ کے میرے لیے جملے آ رہے ہیں کہ فکر نہ کیجئے، اللہ کا کام اللہ سے پوچھ کے کریے، اور اللہ کیسے نہ آپ کو مجھے کوئی کام کرنے کی توفیق دے جو میں صرف اور صرف اس کے لیے کروں۔ صرف آپ نیت کیجئے، باقی کام اللہ تعالیٰ خود بخود کروا لیتا ہے۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو، بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ اس وقت کے پسے ہوئے مسلمانوں کی دعوت کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے لینا ہے، یعنی آپ جا کر ان کو دعوت دیجئے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو تو کر گیا، اور تو ہے ہی نہ شکروں میں، چھچور پناہ ہے فرعون کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو نمک حرام کہہ رہا ہے، اور خود اللہ کے معاملے میں نہ شکرا پن ہے اس کا۔ یاد رکھیے کہ چھوٹا شخص یعنی دل کا چھوٹا آپ کے ساتھ کبھی کوئی نیکی کر بھی دے گا نا، تو بعد میں پھر جتلا بھی دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جب کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر میں تم سے خوف کھا کر تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا، اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ کتنی اسٹریٹ فارورڈنیس ہے موسیٰ علیہ السلام کی، گھبرا نہیں رہے، سچ بات کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھیے، ڈگنیٹی دیکھیے، تبلیغ کا کام کرنے والوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے، نہ تعریف سے متاثر ہو اور نہ تنقید سے گھبرائے۔ آج اگر آپ میں یہ خوبیاں آ گئیں تو آپ بھی انشاءاللہ بہترین دائی یہ دین بنیں گے۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے، یعنی فرعون کی رعونت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ بالکل نہیں گھبرائے، دیکھیے وقت کا فرعون، اور جس کے ساتھ کچھ معاملات بھی پہلے سے چل رہے تھے، تو تبلیغ کرتے وقت حق بات کہیے، زبان نرم رکھیے، لیکن بات کو نہیں بدلنا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے، یعنی پروک کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ رکیے ذرا، آنسو نہ آ جائے ہمارے اگر ہمیں کوئی دیوانہ کہہ دے۔ آپ بڑے اتفاق سے تیاری کر کے 8-10 صفحے لکھ کر لے کر گئیں، ساری رات جاگتی رہیں، اور بڑے اتفاق سے گئیں کہ آج میں اللہ کی بات کرنے جا رہی ہوں، اور ابھی آپ بیٹھی، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی بہت ہی بڑے لوگ بیٹھے ہوں کہ جن کو نہیں سننا، تو وہ آپ کی ذرا سی بات سن کے بیچ میں ٹوکیں، اچھا جی ذرا اس کی تو وضاحت کیجئے، یہ آپ کیا باتیں کرتی ہیں، اور کیا ہم گمراہ ہیں، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو پھر وہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور آپ کو کہہ دیں آپ تو کریزی لگتے ہیں، آپ ایکسٹریم پہ بات کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ کو کیا پتہ ہماری کیا مجبوری ہیں۔ بس یعنی کہ میں اس کا بڑا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کروں نا اللہ مجنون کا، آپ تو پاگل معلوم ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، بدتمیزی کی انتہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انڈر کانفیڈنٹ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر تمیز نہیں ہوتی۔ फिरौन कहने लगा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैद में डाल दूंगा। थ्रेट्स दे रहे हैं, पहले देखिए बेइज्जती की, इंसल्ट की, और मूसा अलैहिस्सलाम जब घबराए नहीं और कहा कि मशरिक़ व मगरिब का और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब अल्लाह है, अगर तुम अक्ल रखते हो तो उसको तो लगा कि ये क्या ना पे चोट डली, तो साथ ही कहने लगा कैद में डाल दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज़ ले आऊँ, दलील का वजन है मूसा की आवाज़ में। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में से तो इसे पेश कर। बस उन्होंने अपनी लाठी डाली तो वो इसी वक्त सरीख यानी वाजे अजदहा बन गई, कोबरा, और अपना हाथ खींच निकाला तो वो भी इसी वक्त देखने वाले को सफ़ेद चमकने वाला दिखने लगा, यदे बैजा। फिरौन अपने आसपास के सरदारों से कहने लगा, भाई ये तो कोई बड़ा दाना जादूगर है, ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से ही निकाल दे, बताओ तुम क्या हुक्म देते हो। इन सब ने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हर कारे भेज दीजिए जो आपके पास जी इल्म जादूगरों को ले आए। डिक्टेटर्स के इर्द गिर्द अमूमन ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो अच्छी बातें करेंगे तभी तो उनकी नौकरियां पक्की रहेंगी। और साथ ही क्या मशवरा दिया, जो आपके पास जी इल्म जादूगरों को ले आए। फिर एक मुकर्रर दिन के वादे पर तमाम जादूगर जमा किए गए, यानी शाही प्रोटोकॉल के साथ एक मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा है, और आम लोगों से भी कह दिया कि तुम भी मजमे में हाजिर हो जाओगे ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाए तो हम इनकी पैरवी करें। जादूगर आकर फिरौन से कहने लगे, अगर हम जीत गए तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा। फिरौन ने कहा, हाँ, बल्कि ऐसी सूरत में तुम मेरे खास दरबारी बन जाओगे। लालच। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया, जो कुछ तुम्हें डालना है डाल दो। उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दीं और कहने लगे, इज्जत फिरौन की कसम, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अल्लाह की कसम या अल्लाह अल्लाह अकबर, तो ये उनका नारा था उस दौर का, जैसे जय फिरौन कह लीजिए, हम यकीनन गालिब ही रहेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी मैदान में डाल दी, जिसने उसी वक्त इनके झूठ मूठ के करतब को निगलना शुरू कर दिया। आज भी हक का ये मोजज़ा यानी कुरान दुनिया के बातिल के आगे डाला जाए तो बातिल दुम दबा कर भाग जाएगा, शर्त यह कि मुसलमानों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो हो। और याद रखिए कि अल्लाह ताला कैसे दिलों की दुनिया बदलता है, जादूगरों के दिल की दुनिया क्या बदली, आयत 46। ये देखते ही जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए और उन्होंने साफ कह दिया, हम तो रब्बुल आलमीन यानी अल्लाह पर ईमान लाए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर। ये होता है एकदम ईमान अंदर आना। आप देखिए कि कुछ लोग टाइम लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चाहिए होता है। बस हजरत उमर को 5-6 साल लग गए, अबू सुफियान कहाँ जाकर फतह मक्का के करीब मुसलमान होते हैं, इकरमा तो उसके भी बाद। इसके बरक्स आप देखिए बीबी खदीजा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत जैद एकदम ईमान ले आए। तो हर इंसान की अपनी कैफियत है, डिपेंड करता है कि वो हिदायत के एतबार से किधर था। आपने कभी बड़ी रोड्स पे लोगों को लेन चेंज करते देखा होगा, जो फर्स्ट लेन में होते हैं सिर्फ इंडिकेटर देंगे, एग्जिट ले लेंगे किसी भी रोड से, जो फोर्थ लेन वाला है उसको पहले फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, और फिर फर्स्ट लेन में आकर एग्जिट लेना होता है, तो लोगों को रुख्सत देनी चाहिए। कुछ लोग फौरी आपकी बात पर रिएक्शन दिखा देते हैं और कुछ टाइम लेते हैं, तो अल्लाह ताला ज़ाया किसी को भी नहीं करता। जादूगरों ने एकदम यू टर्न लिया कि उनके दिल की दुनिया बदली, और जब भी कभी दिल में खैर का इरादा आए तो जादूगरों को याद कीजिए, क्योंकि गाइडेंस डिलेड, गाइडेंस डिनाइड, जितना हिदायत को डिले करते जाएंगे वो पीछे ही पड़ेगी, और जब दीन के किसी काम पे सेकंड थॉट आती है तो अमूमन वो मसलत या ख्वाहिश परस्ती की होती है या मजबूरियों का कोई क्लिक होता है। फिरौन को ये बात अच्छी ना लगी, अपने ही लोगों पर इल्ज़ाम लगाने लगा। फिरौन ने कहा, मेरी इजाज़त से पहले तुम इस पर ईमान ले आए, यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा सरदार है जिसने तुम सबको जादू सिखाया। नोट कीजिएगा, ऐसी शख्सियात होती हैं जो खुद पसंद होती हैं, अपने ही लोगों पे, अपने ही साथियों पे शक करता हुआ दिख रहा है। सो तुम्हें अभी अभी मालूम हो जाएगा, कसम है मैं भी तुम्हारे हाथ पांव उल्टे तौर पर काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, कोई हरज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले ही हैं। यह सच्चा मोमिन मौत से नहीं घबराता बल्कि इंतज़ार कर रहा होता है। इसी बिना पर के हम सबसे पहले ईमान वाले बने, हमें उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हमारी सब खताएं मुआफ़ फरमा देगा। यानी इन्होंने इंतज़ार नहीं किया गवर्नमेंट से इजाज़त का, कुछ सेंक्शंस मिल जाए, अच्छा कुछ रुख्सत मिले, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। यहाँ से सीखिए, जिनको नेकियाँ करनी होती है ना उनको ज़रा सा सिरा मिलता है वो निकल के चल पड़ते हैं, अभी और देख लें, अभी और सोच लें, शायद अभी और भी कुछ असरात हो। मैं देख रही हूँ कि कई जगहों पे अब लॉकडाउन रिलैक्स होता जा रहा है, लेकिन लोग भी रिलैक्स हो चुके हैं। वो कहते नहीं अभी नहीं, ज़रा सा और देखें। सहाबाए किराम ऐसे बेचैन हो जाते थे जब कहीं रोक लिए जाते थे। अल्लाह हमारा ईमान ऐसा बना दे कि हम अल्लाह पे नज़रें लगाना सीख लें। बुखारी की रिवायत है 6508 अबू मूसा अलअशरी से, जो शख्स अल्लाह से मिलने को पसंद करता है, अल्लाह भी इससे मिलने को पसंद करता है, और जो शख्स अल्लाह ताला से मिलने को ना पसंद करता है, अल्लाह ताला भी इससे मिलने को ना पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला से मुलाकात की ख्वाहिश रखनी चाहिए, जैसे कि जादूगरों ने रखी। अपना मुहासवा करते हैं, मेरे दिल की क्या कैफियत है, लफ्ज़ मौत से कहीं जान ही तो नहीं निकल जाती। वो है ना इला मूसा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। पहले ही बता दिए कि दुश्मन आएगा, हम होते तो कहते अल्लाह पे मैं नहीं निकलता, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी अल्लाह के इशारों के मुंतजर होते थे। फिरौन ने शहरों में हरकारों को भेज दिया कि यकीनन ये गिरोह बहुत ही कम तादाद में है, और इस पर हम इस सख्त गजबनाक कर रहे हैं, और यकीनन हम बड़ी जमात हैं इनसे चुकन्ना रहने वाले। प्राउड देखिए, बड़े होने का शौक। बिलाखर हमने इन्हें बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मुकाम से निकाल बाहर किया। जिन घरों का बड़ा मान था वो सब रह गईं और ये डूब गए। इसी तरह हुआ, और हमने इन तमाम चीज़ों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौनी सूरज निकलते ही इनके ताकुब में निकले। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा, हम यकीनन पकड़ लिए गए। आम लोगों का थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ। मूसा एक अच्छे लीडर बन के सामने आकर क्या फरमाते हैं, रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है, जो मुझे ज़रूर राह दिखाएगा। ये है लीडरशिप क्वालिटीज़ मूसा की। जब अपना ताल्लुक लीडर का अल्लाह से मजबूत होता है ना, तो साथी सारे पीछे भी रह जाए ना, तो उसका एतमाद नहीं कम होता, क्योंकि उसकी नज़रें तो अल्लाह ताला पे हैं। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरह वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारिए। बस उस वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मिसल बड़े पहाड़ के हो गया, और हमने इसी जगह दूसरों को नज़दीक ला खड़ा कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को हमने निचाती और सब दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है, और इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, और बेशक आपका रब बड़ा गालिब और मेहरबान है। सोचिए अल्लाह की मेहरबानियाँ कैसे किसी भी कौमों को अल्लाह तआला उछालता है, और जो बहुत अकड़ते हैं, जो बहुत बड़े बनते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य अभी सुना दो, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मजावर बने बैठे हैं। कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू से यही करते देखा तो उनको यही अच्छा लगा। आपने फरमाया, जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं, या तुम्हें नफ़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि ऐसे लोग अकल से थोड़ी काम कर रहे होते हैं। हमने तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाया। आपने फरमाया, कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूज रहे हो? तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, वो सब मेरे दुश्मन हैं। अब कोई सूरत में मूसा की क्लैरिटी दिख रही है, इसलिए शुरू में अलमुबीन का लफ्ज़ आया था कुरान की खूबी में। तो अगर आप हक पे होते हैं ना, तो आपको दबकने और डरने की ज़रूरत नहीं। मूसा की ज़ुबान में लुकनत थी, लेकिन इसके बावजूद हक ने उनको जरूरत दी। कहने लगे, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, वो सब मेरे दुश्मन हैं, सिवाय सच्चे अल्लाह ताला के, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जिसने मुझे पैदा किया और वही मेरी राहबरी फरमाता है। यहाँ से देखिएगा अब इब्राहिम का खूबसूरत अदब अल्लाह के मामले में, वही मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शिफा अता फरमाता है। देखिए, बीमारी की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं, अपनी तरफ करें, क्योंकि उनको यकीन है कि मुझ पे जो तकलीफ आती है मेरे गुनाहों की वजह से आती है। वही मुझे मार डालेगा फिर जिंदा करेगा, और जिससे उम्मीद बंधी हुई है कि वो रोज़े जज़ा में मेरे गुनाहों को बख्श देगा। ऐ मेरे रब, मुझे कुव्वत फैसला अता फरमा, और मुझे नेक लोगों में मिला दे, और मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख दे, और मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना दे, और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। और जिस दिन के लोग दोबारा उठाए जाएं, मुझे रुसवा न कर, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम ना आएगा। ये इतनी प्यारी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसने सिखाई? याद रखिएगा, ये खूबसूरत दुआएं ज़ुबान पे उसी वक्त आती हैं जब अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिला रहमी का हक़ अदा किया, मुशरिक रिश्तेदारों और ख़ास तौर पे बाप को बिल्कुल साफ खुले लफ्ज़ों में तौहीद की दावत दी, क्योंकि वक्त के इस्टेब्लिश नॉर्म्स पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे लोग जब डरते नहीं दबते नहीं तो अल्लाह ताला फिर उनकी ज़ुबान पे हक जारी कर देता है। कौम कुछ भी करे, कुछ भी उसकी बातें हों, लेकिन अल्लाह ताला अब नबियों को हक सिखाते हैं। तो आइए ज़रा देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला से अपनी निस्बत ज़िंदगी के हर पहलू में जोड़ना अल्लाह ताला से तौहीद का कामिल इज़हार है। यानी जब तक अल्लाह से आपका मेरा अपना ताल्लुक़ नहीं जुड़ेगा, हम दूसरों को अल्लाह से नहीं जोड़ सकते। पांच चीज़ों का जिक्र किया इब्राहिम ने अपनी इन बातों में। अल्लाह ने पैदा किया, रहनुमाई भी उसी ने की, राजिक भी वही, शिफा भी उसी के हाथ में, ज़िंदगी मौत देने का इख्तियार भी अल्लाह के हाथ में, रोज़े जज़ा का मालिक भी अल्लाह, बख्शिश की तलब भी अल्लाह से, और अल्लाह हमें शौरी तौर पर कुरान से जोड़ दे ताकि ये सारे यकीन हमारे अंदर भी आ जाएं। क्या सीखा कि अल्लाह अपने वादों से खिलाफ नहीं करता? अल्लाह की मदद के बगैर जुल्म से निजात मुमकिन नहीं। अगर किसी को कुरान और हदीस की कोई बात बताई जाए तो अक्सर लोग यही उजर पेश करते हैं कि हम और हमारे बाप दादा तो यही कुछ करते थे। इसी तरह दवाओं में तासीर भी अल्लाह के हुक्म से आती है, मरित तो फहुआ यशफीन। अल्लाह नेकों की जजात दुनिया में जिक्र जमील और सनाए हसन की सूरत में अता करता है। अल्लाह हमारा भी जिक्र खैर लगा दे। आगे आ रहा है कल्बे सलीम, आयत 89। लेकिन फ़ायदे वाला वही होगा जो अल्लाह के सामने बेऐब दिल लेकर आ जाए, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। और परहेजकारों के लिए जन्नत बिल्कुल नज़दीक ला दी जाएगी और गुमराह लोगों के लिए जहन्नुम जाहिर कर दी जाएगी। सवाल पैदा होता कल्बे सलीम क्या है? आयत 89। वो दिल जो साले हो, वो दिल है जो शिर्क से पाक हो, वो दिल जो गुनाह कीने और निफाक से पाक हो, अल्लाह ताला की कज़ा व कदर को कबूल करने वाला, दूसरों को ईज़ा पहुंचाने से मुकम्मल इज्तनाब करने वाला, जिसकी फितरत बिल्कुल सलामत हो, दुनिया की गफलत का पर्दा जिसके दिल पे ना आया हो। तन्हाई में अपने दिल को पूछिए कैसा है, जिक्र की महफिलों में अपने दिल को पूछिए कैसा है, और तिलावत के वक्त में देखिए दिल कैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन वक्तों में अपने दिल से अपनी असल कैफियत को जान लो। और कल्बे सलीम वो होता है जिस दिल में अल्लाह की इताअत का शौक़ होता है, उसकी दिल में अल्लाह की मोहब्बत अशद होती है, जिसके दिल में तकवा होता है, जिसके दिल में दीन का दर्द होता है। और याद रखिए कि आखिरत में फलाह का दारोमदार इसी कल्बे सलीम पे है। शौरी तौर पर कुरान के नूर से मुनव्वर करना है दिल को कल्बे सलीम बनाने के लिए। ईमान और इताअत से सजा समरा दिल है ये, नाफरमानी फिस्क व फजूर की बीमारियों से पाक, बुग़्ज़ कीना हसद और ख्वाहिशात नफ्स के जाल से पाक कल्बे सलीम है। बुखारी की रिवायत है 6543, अबू हुरैरा रावी हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हारे दिलों और आमाल को देखेगा। ऐ अल्लाह हमारे दिल को भी कल्बे सलीम बना दे ताकि क़्यामत के दिन के रिग्रेट से बच जाएँ। फिर आगे देखिए आयत नंबर 92। वकील अलहुमा कुन्तुम ताबुदून, और इनसे पूछा जाएगा तुम किनकी पूजा करते थे, वो किधर हैं? यानी जिनकी तुम पूजा करते थे वो कहाँ हैं? वो अल्लाह ताला के सिवा थे, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या कोई बदला ले सकते हैं? बस वो सब और कुल गुमराह लोग जहन्नुम में उन्दे मुंह डाल दिए जाएंगे। क्या करें इन आयतों को बताइए मुझे। अल्लाह का कलाम है, उसके बंदे उसकी मखलूक वो जाने और उसके बंदे। हमें तो अपनी फिक्र है कि खुद भी शिर्क से बचना है और इंसानियत को बचाना है, और इब्लीस के तमाम लश्कर भी वहाँ, यानी सब एक ही जगह डाल दिए जाएंगे। लाइक माइंडेड पीपल स्टे टुगेदर, आपस में लड़ते झगड़ते हुए कहेंगे, जहन्नुम के झगड़े देखिएगा कि कसम अल्लाह की, यकीनन हम तो खुली गलती पर थे जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझे बैठे थे, पर अब क्या फ़ायदा। और हमें तो सिवाय इन बदकारों के किसी और ने गुमराह न किया था। बड़े लीडर्स की तरफ इशारे हैं, दीन के या दुनिया के। अब तो हमारा कोई सिफारशी भी नहीं और न कोई गमख्वार दोस्त। अगर काश के हमें एक मरतबा फिर जाना मिलता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। क्या फ़ायदा अब वहाँ जाकर रोने धोने का। ये माजरा यकीनन आपके लिए एक ज़बरदस्त निशानी है, इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। यकीनन आपका परवरदिगार ही गालिब मेहरबान है। जहन्नुम का मंजर आंखों के सामने आ गए इन आयतों को पढ़ के। क्या होगी वो जगह जहाँ सब कोस रहे हैं एक दूसरे को। इन्हीं कौमों में से एक कौम कौमेनु, यहाँ देखिए तरतीब ज़मानी के साथ नहीं चल रहा, वरना ये किस्सा अमूमन सबसे ऊपर होता है। हजरत नूह की कौम का मामला। कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, कौम नूह ने भी नबियों को झुटलाया, जबकि इनके भाई नूह ने कहा क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? सुनो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और बात मेरी माननी चाहिए। ये है बेस्ट दावा। मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं चाहता, बल्कि मेरा बदला तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ है, बेलौस खिदमत। बस तुम अल्लाह का खौफ रखो और मेरी फरमाबरदारी करो। कौम ने जवाब दिया, क्या हम तुझ पर ईमान लाएं? तेरी ताबेदारी तो रज़ील लोगों ने की, थर्ड क्लास पीपल। नऊज़ुबिल्लाह, हर दौर में लोग कहते हैं कुरान पढ़ने वाले लो क्लास मिडिल क्लास लोग हैं। आपने फरमाया, मुझे क्या खबर कि वो पहले क्या करते थे? इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है, अगर तुम्हें शऊर हो तो। मैं ईमानदारों को धक्के देने वाला नहीं, मैं तो साफ तौर पर डरा देने वाला हूँ। उन्होंने कहा, नूह अगर तू बस ना आया तो यकीनन तुझे संसार कर दिया जाएगा। आपको मुझे कभी ये जुमले सुनने पड़े इस तबलीग में, क्या आपको पत्थर मारे जाएंगे? आपने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे छुटला दिया, फिर भी मेरी कौम का लफ्ज़ नहीं छुटता। ये है खैरख्वाही अम्बिया की। बस तू मुझ में और इनमें कोई कतई फैसला कर दे और मुझे और मेरे ईमान वाले साथियों को निजात दे दे। चुनाचे हमने उसे और उसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करा कर निजात दी, इसके अलावा बाकी तमाम लोगों को डुबो दिया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है और इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले भी नहीं थे। सोचिए, अगर उस दौर में अखबार छपता और उस अखबार को कोई आज निकाले तो शह सुर्खी क्या होती। और बेशक आपका परवरदिगार अलबत्ता वही है ज़बरदस्त रहम करने वाला। एक बड़ी ताकत ज़मीं बोस हुई और एक दूसरी कौम का जिक्र। आदियों ने भी रसूलों को झुठलाया, जबकि इनसे इनके भाई हूत ने कहा क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, बस अल्लाह से डरो और कहना मेरा मानो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरा सवाब तो तमाम जहान के परवरदिगार के ही पास है। और क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारत बना रहे हो और सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया कि तुम इनमें हमेशा रहोगे? जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और जुल्म से पकड़ते हो, अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। क्या पता चला, जब कौमों का मिजाज बिगड़ता है ना, तो लोगों की ज़रूरियात पे खर्च करने को तो कुछ हो ना हो, लेकिन यादगारें कायम करते हैं। आज भी आप देखिए कि रिसोर्सेज का बहुत बड़ा मिसयूज़ यादगारें कायम करने में होता है। और अंबिया कराम किस तरीके से लोगों को सारी दावतों से एक साइड पे करके अल्लाह से जोड़ते हुए दिखते हैं, ये कुरान है ही ऐसा। जितना ज़्यादा आप इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लेंगे, ये कहने की नौबत ही नहीं आएगी कि एक मौका और मिले तो वापस जाएं। और याद रखिए, हज़रत नूह की कहानी पढ़ते हुए ख़ास तौर पे और बाकी पैगंबरों के भी एक बात समझ आती है कि अपने गम को दीन का गम बना लें, आपके ज़ाती गम मिट जाएंगे। अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करेंगे, इताअत करेंगे, अल्लाह ताला आपकी हिदायत को दिन ब दिन बढ़ाएगा। इसीलिए फरमाया, क़यामत के दिन से डरो, आयत 132। इससे डरो जिसने इन चीज़ों से तुम्हारी इमदाद की कि जिन्हें तुम जानते हो, इसने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद से, अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ ही जिक्र है, बागात और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है, ये चीज़ नहीं बंदे को बेचैन होने से रोकती, क्योंकि यही तो बेचैनी है कि बनेगा क्या और उस दिन होगा क्या। उन्होंने कहा, आप वाज कहें या वाज कहने वालों में ना हो, हम पर यक्स हैं, यानी हमने आपसे फ़ायदा नहीं उठाना। कुछ लोगों का यही रवैया, आप एक नहीं 10 दफ़ा दिन में बुलाएं, हमने नहीं आना तो हमने नहीं आना। देखिए, जब कौमें नबियों के साथ ये मामला करें, क्योंकि नबी का तो कोई अल्टरनेट भी नहीं होता ना, दुनिया में आप मेरी बात पे नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएं, जाइए सही, सीखिए तो सही। लेकिन अम्बिया कराम तो एक वाहिद सोर्स ऑफ गाइडेंस होते थे, जब कौमें उनके साथ इस तरह के स्टबन जुमले बोलें तो फिर अल्लाह को गुस्सा तो आएगा ना उन पर। ये तो बस पुराने लोगों की आदत है और हम हरगिज़ अजाब ना दिए जाएंगे। चूंकि आदियों ने हजरत हूद को झुटलाया, इसलिए हमने इनको तबाह कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है और इनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। बेशक आपका रब वही मेहरबान और गालिब है। سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کے بھائی صالح نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میرا کہا مانو۔ دیکھیں ہر نبی کی دعوت ایک ہی جیسی ہے۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس اللہ پروردگار عالم کے پاس ہے۔ کہ ان چیزوں میں جو جہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں کتنے کو دن جی لو گے، یعنی ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ ذرا آج ہم بھی دیکھیں اپنے ارد گرد کیسے بڑے بڑے پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا کر اندر بڑے بڑے خوبصورت گھر بنائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس دنیا میں اگر ہمیشہ بھی رہنا ہوتا تو شاید پھر بھی اتنے سامان کی ضرورت نہیں تھی جو ہم چند دن کے لیے تیاریاں کر کر کے بناتے ہیں۔ اسی بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری توجہ دنیا کے گھروں سے اوپر اٹھ کر آخرت کے گھر کی طرف آئیں۔ یہاں صرف ضرورت پوری کرنی ہے، باقی خواہشات، تمنائیں، ارادے، مال، ورک، اسکلز اس دنیا میں ڈالنا، کیونکہ ہم خواتین کے دین سیکھنے اور سکھانے کے رستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ گھر اور گھرداریاں بھی ہیں۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ۔ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، وہ بولے کہ بس تو ان میں سے جن پر جادو کر دیا گیا۔ دیکھیے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مزاج ہی نہیں سیدھا ہوتا، قوموں کا رویہ انبیاء کرام کے ساتھ بالکل اسی طرح کا دیکھتا ہے۔ بات بات پہ جھگڑتے، بات بات پہ بحثیں کرتے، جیسے کوئی بہت بگڑا ہوا بدتمیز بچہ اپنی ماں سے بات کرے۔ بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ۔ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، وہ بولے بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا، برین واش کر دیا تیرا کسی نے، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی پانی پینے کی ایک باری اس کی، اور ایک مقرر دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ خبرداری سے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں گرفت میں لے گا۔ خود ہی معجزے مانگے اور اب اس کی قدر نہیں کر پا رہے۔ انسان زندگی میں بڑی نیکیوں کے موقع مانگتا ہے، اللہ کوئی موقع ہے، جو موقع آتا ہے نا اصل میں وہ آزمائش کا پرچہ ہوتا ہے، اس میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، پس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے ان کو آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے، اور ان میں اکثر لوگ مومن تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ قوم سموت نے ایک معجزہ مانگا، اسی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی سے دن رات مطالبے کرتے تھے۔ ذرا ان کی مماثلت دیکھیے گا، مشرکین مکہ کے سامنے معجزہ تھا قرآن، جو آج آپ کے میرے سامنے بھی ہے، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ سمودیوں کے سامنے ان کے کہنے پہ ایک پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی جس کو ناقت اللہ کہا گیا، مانگی لیکن بعد میں ایمان نہ لائے اور اسی کو مار دیا۔ تو قومیں جب ایسے معاملے کریں تو بتائیے پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ ایک اور قوم جو آج کے دور کے ایک معروف فتنے کا شکار تھی، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، اور ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنا دی ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا لوط، اگر تو باس نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ خواہش پرست لوگ دھمکیاں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، قالین، آئی ڈونٹ لائک دس، اظہار کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں انبیاء کرام۔ اگر برائیوں پہ نہ ٹوکتے تو لوگ کبھی بھی ان کو اس طرح نہ کہتے۔ میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ اپنے لیے نوٹ کیجئے اس دعا کو، نیت کر کے حضرت لوط کو ذہن میں لا کر اس دعا کو پڑھیے کہ اللہ ہماری نسلوں کو ہومو سیکشولیٹی اور لیسبین کے فتنے سے بچا۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر خاص قسم کا مینہ برسایا، بس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا، مراد پتھروں کی بارش۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، اس میں بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی غلبے والا مہربانی والا ہے۔ اسٹوریز آف دی پروفیٹ ہم سب کے لیے مورلز اینڈ لیسنس سے بھری ہوئی۔ اکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ڈر خوف نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو۔ اس پر میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے اگر اس نے مال کھایا ہو؟ اس معاملے میں یاد رکھیے، زبان دب جاتی ہے ان لوگوں کی جو مال لے کر یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ سے اجر پانے والے حق کو کبھی باطل اور باطل کو کبھی حق نہیں کہتے۔ نہ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ انبیاء کرام اور داعی دین ہمیشہ معاشرے سے فساد کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا، تو ان میں سے جن پر جادو کر دیا گیا، اور تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ بتائیے، اگر آپ کو مجھے یہ جملے کوئی بول دے تو ہم دین کی دعوت دیں؟ کتنا نبی اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کام کرتے تھے، چوٹیں کھاتے، باتیں سنتے، ہم ذرا سی بات سن کے کہتے اچھا آج کے بعد میں نہیں کام کروں گی، مجھ پہ الزام لگائے، مجھ پہ بات کر دی، اور کیا ہے اب دین کا کام ہی کرنا ہے جتنا ہی۔ یاد ہے کہ جب تک یہ نفس کشی نہ ہو جائے دین کی طرف آنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ فتنے اٹھیں گے۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، کیونکہ انبیاء کو یقین تھا نا کہ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے نا، پھر لوگوں کی تعریف اور تنقید اس کو نہیں روکتی اور نہ ادھر ادھر کرتی ہے۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ تو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ بار بار قرآن آپ کو مجھے یہ پیغام دیتا ہے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی غلبے والا اور مہربانی والا ہے۔ اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے قرآن پاک کا تعارف ہے۔ جو بھی صبح کورس کی بات کی ہے سبیل الجنہ، تو اس کے انٹروڈکٹری سیشنز میں یہ بات بتائی جاتی ہے جو یہاں آ رہی ہے۔ قرآن پاک کا پورا نام کیا ہے ابھی آپ سنیں گے۔ اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ دل تو ان کے مانتے تھے، زبان پہ نہیں آ سکا بس تعصب کی وجہ سے۔ اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے تو کیا ہوتا؟ اس سے پہلے دیکھیے ترک قرآن کے اثرات۔ قومیں جب قرآن کو ترک کر دیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، انفرادی اثرات بھی آتے ہیں، اجتماعی اثرات بھی اس معاشرے پہ اس کے آئیں گے، اور آخرت میں جو اثرات آتے ہیں وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ انفرادی زندگیوں میں قرآن کو چھوڑنے کا جو اثر آتا ہے وہ کیا کہ ایمان اور تقویٰ میں کمی ہو جاتی ہے۔ حب دنیا اور شیطانی تسلط کا شکار ہوتا ہے بندہ۔ دل کی جسمانی اور روحانی بیماریاں آنے لگتی ہیں، بے چینی اور ڈپریشن کا شکار، سکون کی تلاش میں گناہوں کا میلان بڑھتا ہے، مصیبتیں اور فتنے آتے ہیں۔ سوچیے ذرا، اگر آپ انفرادی طور میں ان میں سے کسی چیز پہ بھی ہیں تو دعا کیجئے کہ علاج کے بعد قرآن کو ترک نہیں کروں گی بلکہ پکڑ لوں گی۔ اجتماعی اثرات کیا آتے ہیں؟ کہ حقوق العباد کی تقصیر ہوتی، لوگ ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیتے، شرک اور گناہوں کی کثرت آنے لگتی ہے، معاشرے میں فتنے فساد پھیلنے لگتے ہیں، فرقہ بازی اور امت کا زوال شروع ہوتا ہے، رحمت خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، اور کمزور نسلیں پیدا ہوتی ہیں، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اور جو آخرت میں ترک قرآن کے اثرات ہوں گے وہ تو بڑے ہی سخت ہیں۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں گھبراہٹ ہوگی، قبر میں قرآن کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا چونکہ دنیا میں ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، عذاب قبر ہوگا، آپ کی شفاعت کی بجائے شکایت کے مستحق بنیں گے، مغفرت کے لیے قرآن کی سفارش نہیں ملے گی، اور باعث حسرت ہوگا۔ تو ابھی تک کیا سیکھا؟ اب صورت خاتمے پہ آ رہی ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، منکرین اور مشرکین کی سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ قوم لوط، عاد، ثمود، شعیب، نوح علیہ السلام کی قوموں نے انبیاء کو چھٹلایا اور سزا پائی، اور قرآن کا تعارف یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اور بنی اسرائیل کے علماء نے قرآن کو جھٹلایا تھا۔ اب سنیے کہ جب قرآن پیش کیا جاتا تھا تو کیا کہتے، اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے، کون جس کو عربی نہیں آتی، تو پھر کیا کہتے؟ قرآن کو پہنچانے کے کچھ مراحل بھی دیکھ لیجئے۔ رب العالمین کی طرف سے ہے، جبرائیل کے ذریعے آیا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ और याद रखिए कि कुरान की सच्चाई के कुछ दलाइल ले लीजिए कि सच है, हक्कानियत इसकी। पहली बात है फितरी दलाइल, आपका दिल कहता है ये कुरान सच है। अक्ली दलाइल ले लीजिए, अक्ल मान नहीं सकती इतना खूबसूरत कलाम किसी इंसान का हो। फिर मोजज़े और नबुवत की निशानियाँ जो इस कुरान में हैं, ये किसी इंसान के बस की बातें ही ना थी। और आने वाले दौर की पेशन गोइयों से भरा हुआ ये कुरान है। जो जिक्र किया था कि कुरान पाक का मुकम्मल नाम क्या है, तो वो है आयत 192 से 198 में कुरान पाक का तारुफ। कभी भी किसी जगह उलमा ने अगर कुरान पाक का तारुफ कराया गया, तो ये सब जुमले उसमें आएंगे जो आप सूरत शुरा में पढ़ चुके। रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा, इसे अमानतदार फरिश्ते लेकर आए, आपके दिल पर वही के जरिए नाजिल हुआ, साफ अरबी जुबान में है। कुरान पाक पिछली इल्हामी किताबों में भी है, इसका तज़किरा वहाँ मौजूद है, और इसकी हकीकत से तो बनी इसराइल के उलमा भी वाकिफ़ हैं। अल्लाह करे कि हमारे दिल भी वाकिफ़ हो चुके हों। बुखारी की एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने मोमिन की मिसाल जो कुरान की तिलावत करे एक संतरे से दी, जिसका मज़ा भी अच्छा, रंग भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी। और जो मोमिन कुरान की तिलावत नहीं करता, उसकी मिसाल खजूर की सी दी, मज़ा तो उम्दा होता है लेकिन खुशबू नहीं होती, रंग भी काला है। और बदकार जो मुनाफिक हो वो कुरान पढ़े तो उसकी मिसाल रेहाना की तरह, खुशबू तो अच्छी है लेकिन मज़ा कड़वा है। और बदकार की मिसाल जो कुरान की तिलावत भी ना करे, अंदराइन की सी है, जिसका मज़ा भी कड़वा और खुशबू भी नहीं। तो अल्लाह में पहली मिसाल के मुताबिक ऑरेंज बना दे, संतरा बना दे कि हम कुरान पढ़ें भी और हमारी खुशबू भी अच्छी हो। अब सुनिए अगली आयत को। बस वो इनके सामने इसकी तिलावत करता तो ये इसे बावर करने वाले न होते। इसी तरह हमने गुनाहगारों के दिलों में इस इनकार को दाखिल कर दिया है। वो जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलाहिजा न कर ले, ईमान न लाएंगे। बस वो अजाब इनको अचानक आ जाएगा, इन्हें इसका शऊर भी ना होगा। इस वक्त कहेंगे क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी। बस क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? ये अजाब की जल्दी मचाना क्या है? कब लोग अजाब की जल्दियां मनाते हैं? जब गुनाहों पे जम जाते हैं, जब लाइफस्टाइल बनाकर गुनाह करते हैं, तो दूसरे लफ्जों में वो अल्लाह के अजाब को बुलाते हैं। अच्छा ये भी बताओ, अगर हमने इन्हें कई साल भी फायदा उठाने दिया, फिर इन्हें वो अजाब आ लगा जिससे ये धमकाए जाते हैं, यानी सारी जिंदगी की नेमतें इनकी हम छीन लें, तो जो कुछ भी ये बरतते रहे इसमें से कुछ भी फायदा ना पहुंचा सकेगा। हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इसी हाल में कि इसके लिए डराने वाले थे, नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले नहीं। इस कुरान को शयातीन नहीं लाए। मक्का वालों का एक इल्ज़ाम था कि गारे हिरा में आपके शैतान आता है और आपके पास ऐसी ऐसी बातें लाता है जो हमारे बुजुर्गों और हमारे बुतों के खिलाफ है। तो उसका जवाब है कि शयातीन नहीं लाते, ना वो इस काबिल है ना इन्हें इसकी ताकत है, बल्कि वो तो सुनने से भी महरूम कर दिए गए हैं। बस तो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न पुकार के तू भी सजा पाने वालों में हो जाए। अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दे। ये इब्तदाई दौर की वही में से एक वही थी। इसके बाद फिर आपने रिश्तेदारों की दावत की और उनको बुलाया। आप और मैं भी अपनी फ्रेंड्स की दावत कर सकते हैं जहाँ मुमकिन हो, और उनको कुरान के इन कोर्सेज की दावत दे सकते हैं। अरबों का कौल क्या था कि शोरा के कब्जे में जिन होते हैं जिनको अशार सिखाते हैं, लिहाजा ये कुरान भी उन्होंने सिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप शायर नहीं और ये अल्लाह का खालिस कलाम है। हकीकत ये कि कुरान हबलुल्लाह है, हुवा हबलुल्लाह हिलमतीन, अल्लाह की मजबूत रस्सी है। कुरान की रस्सी हमें अल्लाह से जोड़ती है तो ताल्लुक माल्ला मजबूत होता है। कुरान हमें अल्लाह से करीब तर करता है तो तकर्रुब इलल्लाह का जरिया बनता है। कैसे दावत देनी है? आयत 215, रिश्तेदारों को बुला लिया, दावत खिला दी, खाना पानी, अब दावत दीजिए। कैसे? वंजिर अशीरत कल अक्रबीन वक्फिज जनाह कलिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन, इनके साथ नरमी से पेश आइए जो भी ईमान लाने वाला हो कि तेरी ताबेदारी करे। अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करेंगे तो तू ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से बेजार हूँ जो तुम कर रहे हो। अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पे रखो जो तुझे देखता रहता है जबकि तू खड़ा होता है, कब? तबलीग के लिए और क़यामुल्लैल के लिए, और सजदा करने वालों के दरमियान आपका घूमना फिरना भी। वो बड़ा ही सुनने वाला और खूब ही जानने वाला है। क्या मैं बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। उचटती हुई सुनी सुनाई बातें पहुंचा देते हैं और इनमें से अक्सर झूठे हैं। शायरों की पैरवी वो करते हैं जो बहके हुए हों। क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक एक बियाबान में सर टकराते फिरते हैं? और वो कहते हैं जो करते नहीं, सिवाय इनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह ताला का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया, जिन्होंने जुल्म किया वो भी जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं। तो यहाँ आखिर में देखिए, सूरत का नाम शोरा था, इसकी बात भी आ गई। तो याद रखिए कि हर शायर बराबर नहीं, अलामा इकबाल की शायरी तो कुरान की तफसीर लगती है। अमूमी तौर पे शायर औरतों की बातें, हुसन की बातें, जुल्फ़े, मुबालगा रही, हत्ता कि शिरक तक पहुँचते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। ओवरऑल शायरी एक बहुत बड़ा कलाम है। आगे सूरत नमल है, 27 नंबर की सूरत, 93 आयात है, चुनटी के नाम पे सूरत है। क्यों है, आइए देखिए कि चुनटी को भी पहचान थी हक की, और वो भी अल्लाह की मखलूक है और कैसे खूबसूरत तरीके से काम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसीन, तिल्का आयातुल कुरान व किताब मुबीन, हुदं व बुशरा लिल मुमिनीन। कुरान की मोहब्बत से भरी हुई सूरतें हैं। हर सूरत के आगाज में कुरान पाक की बात है। तौसीन, ये आयतें हैं कुरान की, यानी वाज़े और रोशन किताब की, हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखरत पर यकीन रखते हैं। क्या पता चला, कुरान पाक की हिदायत और रहनुमाई से सिर्फ वही फ़ायदा उठा सकते हैं जो इस किताब पर दिलो जान से ईमान ले आए और अपनी अमली ज़िंदगी में भी इताअत और इत्तबा का रवैया इख्तियार करें। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में शामिल कर दे। और अल कुरान क्या है इन आयतों की रोशनी में, किताब मुबीन, खुदाऊँ व बुशरा। लेकिन ये सब फ़ायदा होगा ईमान के साथ, वरना तो बस कानों से टकराते हुए अल्फाज बनते हैं। दुआ कीजिए कि ये किताब हमारे लिए रहमत और हिदायत का ज़रिया बन जाए और हम इसको अपनी ज़िंदगी की किताब बना लें। जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते, हमने इनको इनके करतूत जीनदार करके दिखा दिए, बस वो भटकते फिरते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए बुरा साफ है और आखरत में भी वो सख्त नुकसान याफ्ता हैं। बेशक आपको अल्लाह अलीम व हकीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। दिल चाह रहा है ना कुरान सीखने को, इतनी दफ़ा अल्लाह के कलाम में इसका तذکرہ आ रहा है। अब फिर यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, बाकी अम्बिया कराम की कहानियों की तरह, असल में आपको मुझे एक बड़े प्यारे ख़ानदान से जोड़ा जा रहा है इन सूरतों में, और वो नबूवत का ख़ानदान है। फरमाइश, क़ाल मूसा ली अहलिही, याद होगा जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से या तो कोई ख़बर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा ले अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा ताकि तुम ताप सको। याद आया आपको, मैं याद कराऊँ, सूरह तौहा में पढ़ा था हमने ये किस्सा। जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई कि बाबरकत है वो जो इस आग में है, और बरकत दिया गया वो जो इसके आस पास है, और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम, बात ये है, सुन लीजिए, क्या सुनिए, बात ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ ग़ालिब बाहिकमत। पहली वही, तो अपनी लाठी डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इसे हिलता जुलता देखा इस तरह गोया कि वो एक सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी ना देखा। ऐ मूसा, खौफ न खाइए, मेरे हजूर पैगंबर डरा नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम सांप बनती हुई लाठी को देखा। आज भी शैतान जब हम किसी अच्छे काम की नियत कर रहे होते हैं ना, तो उसको इसी तरह से खौफ सदा करके दिखाता है। नहीं सोच लो तो सारी लाठियां फेंक कर अल्लाह के हुक्म पे लब्बैक कहने वाले ही आगे जाते हैं। लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर इसके बस नेकी करें इस बुराई के पीछे, तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डालिए, वो सफ़ेद चमकीला होकर निकलेगा बग़ैर किसी ऐब के। तू नौ निशानियाँ लेकर फिरौन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। बस जब इनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मौज से पहुंचे तो कहने लगे ये तो सरीख जादू है। उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि इनके दिल यकीन कर चुके थे सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की बिना पे। बस देख लीजिए कि इन फितना परदास लोगों का अंजाम कैसा हुआ। इससे पता चलता है कि दिल मान जाता है, लेकिन जब तासुब और दिल में बुराइयाँ होती हैं ना, तो लोग मानते नहीं है। रूह पहचानती है ये कुरान है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हक है, लेकिन ज़ुबान ने तासुब की वजह से नहीं आती। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि जो इन चीज़ों को मान लेते हैं लेकिन इसके तकाजे नहीं पूरे कर पाते। बस जब इनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मौजज़े पहुंचे तो कहने लगे ये सरी जादू है। उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि इनके दिल यकीन कर चुके थे सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की बिना पे। बस देख लीजिए कि इन फितना फैलाने वाले लोगों का अंजाम कैसा हुआ। और यकीनन हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा तारीफ़ इस अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई। और दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए और कहने लगे, लोगो हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ दिए गए, बेशक ये बहुत खुला व फजल इलाही है। यहाँ से अब आपको इस्लाम का मिजाज दिखेगा कि दीन के साथ साथ दुनियावी तरक्की भी कीजिए। हमने भी आज सारे गैजेट, सारे मीडियम्स, सारे उलूम को सीखना है, बस इनको इस्लामाइज करने की देर है। और याद रखिए, अगर मुसलमान दुनियावी तरक्की में पीछे रह गए तो शैतान इन मीडियम्स पे से अपने काम तो कर जाएगा और हम और भी पीछे गिरेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ अनयूजुअल साइंटिफिक मौजजात दिए गए थे, उनका जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। हर हर किस्म के अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। यूजाउन डिसिप्लिन कौम थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत से यहाँ मुतासिर होइएगा। देखिए, जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, है चींटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनके लश्कर तुमको रौंद डालें। इनकी इस बात से हजरत सुलेमान मुस्कुरा कर हंस दिए और दुआ करने लगे, रब्बी औज़ेनी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आज आप और मैं चींटियों की बोली सीखने लगे तो कितने साल लग जाए। इंग्लिश सीखनी इतनी मुश्किल, नॉर्वेजियन सीखनी इतनी मुश्किल, और इससे पता चलता है कि इन मखलूकात को भी सेंस है। क्या पता जब हम बैठे होते हैं तो चिड़िया हमारी भी बातें सुनती हों और सास की बातें बहू को सुना दें, और आप जब स्प्रे करें तो वो भी चीखती हों कि बचाओ अपने आप को। तो क्या सीखा कि बाज़ दफ़ा मुनकरीन के गुनाहों का वबाल ये होता है कि उनको बुराइयाँ अच्छी लगने लगती हैं। पैगंबर आलिमुल गैब नहीं होते, जन्नत में कोई शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता, और किस्सा सुलेमान हमें सिखाता है कि दुनियावी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी वही इलाही की रोशनी में। और हज़रत सुलेमान का ये इतराफ़ कि मेरे रब का फजल इसलिए है कि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ, कि ना शुक्री तो नेमतें आजमाइश इम्तिहान के पर्चे हैं। अब देखिएगा कि हज़रत सुलेमान का डिसिप्लिन, एक स्टूडेंट एक दिन नहीं आया और सुलेमान को पता लग गया, क्योंकि अच्छे उस्ताद स्टूडेंट्स की एक छुट्टी तो क्या उनका देर से आना भी बर्दाश्त नहीं करते। सुनिएगा, बहुत दिलचस्प किस्सा है। I-20, आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं खुद खुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है, यानी उसकी आईडी क्यों नहीं दिख रही, और कुछ की आईडी तो दिख रही है लेकिन वो खुद गायब है। यकीनन मैं इसे खुद सख्त सजा दूंगा, या इसे जिबा कर डालूंगा, या मेरे सामने कोई सरीख दलील बयान करे। कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आकर उसने कहा, मैं एक ऐसी चीज़ की खबर लाया हूँ कि तुझे इसकी खबर ही नहीं, मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा इनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ न कुछ दिया गया है, और इसका तख्त भी बड़ा अजमत वाला है। यानी एक परिंदे को हैरत है कि एक औरत कैसे हुक्मरानी कर रही है। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया, यानी शिर्क नहीं बर्दाश्त हो रहा एक परिंदे से। शैतान ने इनके काम इन्हें भले करके दिखा दिए कि सही राह से रोक दिया, बस वो हिदायत पर नहीं आते। अल्लाह अकबर। कई सी अल्लाह के लिए सजदे करें जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते वो सब कुछ जानता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अजमत वाले अर्श का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठा है। तो क्या पता चला, अच्छी मैनेजमेंट उजर देने वालों के उजर चेक करती है। डिसिप्लिन लाइए अपनी जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो। मेरे इस खत को ले जाकर इनको दे दे, फिर इनके पास से हटा और देख क्या वो जवाब देने वाले हैं। वो औरत जनीमल का सबा, उसका जिक्र है, कहने लगी है, सरदार मेरी तरफ एक बावक्त खत डाला गया, यानी शाही खत, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नबी से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे सामने आ जाओ। टू दी पॉइंट दावत का खत है ये, जैसे अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ बादशाहों को खत लिखे थे दावत के लिए। इसने कहा, मेरे सरदारो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी अमर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और आय ना हो नहीं किया करती। इसका अंत कि मलका समझदार थी, मशवरों से काम करती थी, वन मैन शो नहीं थी। इन सब ने जवाब दिया, हम ताकतर कुव्वत वाले सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं, आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म करती हैं। डिप्लोमेटिक आंसर होता है अमूमन दरबारियों का, इसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैंने एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मलका आजमाना चाहती थी कि बादशाह लालची तो नहीं। बस जब कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो इसने तुम्हें दिया है। बेनियाजी की शान है गिफ्ट के मामले में। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो, यानी मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे तोहफे। जा इनकी तरफ वापस लौट जा, हम इनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की इनमें ताकत नहीं, और हम इन्हें जलीलो पस्त करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। इस्लाम का इजहार चाहते थे उनके सामने। आपने फरमाया, ऐ सरदारो, तुम में से कोई है जो इनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही इसका तख्त मुझे ला दे। देखिए, यहाँ उस दौर की साइंसी तरक्की की तरफ कुछ इशारे हैं। एक कवि है कल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं इसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर और हूँ भी अमानतदार। जिन्नों के पास वाकई ताकत होती है, और अमानतदार इसलिए कि तख्त बड़ा कीमती था, हीरे जवाहरात लगे हुए थे। लेकिन इससे भी बड़ी ताकत थी किसी के पास। वो कौन था? जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, क्या आप पलक छपकाएं, इससे भी पहले मैं आपके पास इसे पहुंचा सकता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या ना शुक्री। ये है बंदे मोमिन की शान नेमतों के मामले में। हर खूबी अल्लाह की तरफ जोड़ते हैं और शुक्रगुजार बनते हैं। शुक्रगुजार अपने ही नफ़े के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो शुक्रगुजारी करे तो मेरा परवरदिगार गनी और करीम है। हुक्म दिए इस तख्त में कुछ तब्दीली कर दो, यानी देखना चाहते थे कि मलका सबा सिर्फ मलका ही है या एक औरत भी है, क्योंकि औरतें अपनी चीज़ें बड़ी जल्दी पहचान लेती हैं। कुछ इसी किस्म की बात इधर है, या राह पा लेती है कि इनमें से होती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो इससे कहा, दरियाफ्त किया गया, क्या ऐसा ही तेरा भी तख्त है? इसने जवाब दिया गोया कि ये तो वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और वो मुसलमान थे। क्या पता चला किसी को मुतासिर करने के लिए इस्लाम की और अपने नाम की ताकत दिखानी चाहिए, क्योंकि जब दिल मसहूर हो जाते हैं तो अक्लें झुक जाती हैं। इसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही थी। यकीनन वो काफिर लोगों में से थी, यानी इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मुशरिका थी, वरना फितरत को पहचान गई। इससे कहा गया, महल में चली चलो, जिसे देखकर ये समझ के ये हौस है, इसने अपनी पिंडलियां खोल दी। फरमाया, ये तो शीशे से मढ़ी हुई इमारत है। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत किस्सा, कैसे अल्लाह ने उस औरत का दिल बदल दिया। यकीनन हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आपने फरमाया, मेरी कौम के लोगों, तुमने की से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह से इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे, हम तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। आपने फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के हाँ है, बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। इस शहर में 9 सरदार थे जो ज़मीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खाकर अहद किया कि रात ही को साले और इसके घर वालों पर हम छापा मारेंगे और इसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम इसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद न थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने मकर किया, यानी खुफिया तदबीरें, और हमने भी, और वो इसे समझते ही न थे। अब देख ले कि इनके मकर का अंजाम कैसा कुछ हुआ, कि हमने इनको और इनकी कौम को सब कुछ गारत कर दिया, सबको गारत कर दिया। ये हैं इनके मकानात जो इनके जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। हमने इनको जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे, बाल बाल बचा लिया। अल्लाह हमें भी बचा लेना बाल बाल, जब तेरे फितने और तेरी तरफ से आफते आए। और लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, जबकि इन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हो? ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक यह कि तुम बड़ी नादानी कर रहे हो। ठीक है, जिन बच्चों ने सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ लिया कुरान का, कम अज कम मुआशरे के रूप से तो वो देख ही लेंगे ना कि क्या खराबी है। قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آلِ لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں، پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو سوائے ان کی بیوی کے سب کو بچا لیا، اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی، پتھروں کی بارش، پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہے، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ جواب دیجئے، صرف اور صرف اللہ ہی بہتر ہے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 19، خوبصورت کہانیوں سے بھرا ہوا۔ جیمز لیجئے گا، کتاب مبین پڑھی، ہجران قرآن سے بچنا ہے، قرآن نہیں چھوڑنا، جہاد بالقرآن کرنا ہے، عباد الرحمن میں شامل ہونا ہے، قلب سلیم لے کر دنیا سے جانا ہے، اور شاعروں کی پیروی کرنے والے تو عموماً بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے ان کو قرآن سے جوڑنا ہے، اور پھر فتنہ کیا ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، اس کا تھوڑا سا حل لیتے جائیے، اس حقیقت کو ماننا ہے۔ یقین کیجئے، اس کو بیٹھ کے سن لیجئے، چند منٹ ہی لگیں گے، بہت کچھ ملے گا اس میں سے انشاءاللہ، کیونکہ آج اس کتاب کی ڈیو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو ماننا ہے کہ زمین کے اوپر اور اس کے نیچے قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ادا کرنے ہیں، اس کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے، قرآن پاک کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینی ہے۔ تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، اور اس کی آیات سے نصیحت لینی ہے، اس کو وظیفوں کی کتاب نہیں بنانا، رجوع للقرآن کا عزم مصمم کرنا ہے، قرآن کو رسول اللہ کا زندہ معجزہ جانتے ہوئے قرآن کی زندہ فکر کو اپنانا ہے، قرآن پاک سے اپنی انفرادی زندگیوں کو بھی سنوارنا ہے، اور قرآن پاک سے اپنی اجتماعی زندگی کی اصلاح کرنی ہے۔ یہی ہے نور القرآن کا بھی پیغام، آپ سب کے نام قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خير۔